हरिभवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर की जय। श्री श्री राधा कृष्ण विनाश ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनश्लाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपतदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितं जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्गुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने के लिए अधिकार है तुम्हारा, और मा ते संगोस्त्व कर्मणि, कभी कर्म ना करने के लिए आसक्त मत हो या कर्म से आसक्त मत हो। डोंट बी लेजी इन डूइंग, इतना ही हम लोग ले लेंगे, बीच का छोड़ दीजिए। जो कर्म मीमांसक लोग उनको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ बीच वाला छोड़ दीजिए। हाँ जैमिनी और उनके अन्य भगवान ने वो कर्म ना करने के लिए हिचकिचाओ मत, कर्म करना आपके लिए अधिकार है, ऐसे है ना, बहुत अच्छा लगेगा ना उनको, है ना, समझ आ गए। कर्मकांड जैमिनी हमें आई 42वां 43वां श्लोक 42वां 43वां श्लोक। और इनका प्रश्न था, उनका प्रश्न था क्या कर रहे हो महात्मा जी, उनका प्रश्न था कि हम लोग यहीं पर खर्च कर रहे कर्म भौतिक समाज में और 50% उसे समस्या क्या होता है, जो यहाँ पर कर्मयोग के बारे में भगवान बोल रहे हैं वर्णाश्रम के अनुसार, वो हमारा कर्म ही भगवान का क्या हो जाता है, सेवा हो जाता है, वो भक्ति हो जाता है, हमारा प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ही भक्ति हो जाता है। लेकिन बाहर भक्ति और हमारा ऑक्यूपेशन जो है वो अलग हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय वो ऑक्यूपेशन के लिए जाता है, ज़्यादा समय शक्ति संघर्ष उसमें जाता है, और भक्ति के लिए थोड़ा समय मिल जाता है ना, तो ऐसे हो जाता है। और भक्ति करने के लिए वो उत्साह भी नहीं रहता है, ज़्यादा लोग इसलिए भक्त नहीं बनते, ज़्यादा लोग नहीं बनते भक्त लोग। आप देखो कितना पुश करने के बाद भी कॉन्ग्रेगेशन कुछ प्रगति ही नहीं करता है, है ना, प्रीचर असंतुष्ट हो जाता है ना। प्रीचर लोग कुछ गाड़ी है कितना ढकलने के बाद भी आगे नहीं बढ़ता है, पीछे ही पड़ रहे, वो वही पर खड़ा रहता है, सालों लग जाते हैं ना। आप इतना चिल्ला चिल्ला के अपना रक्त खो के बहुत कुछ करते हैं, कुछ भी होता नहीं। इससे अच्छा है आपको धन मिलेगा, आपको थोड़ा उनको आप अच्छा कर रहे भक्ति ऐसे करते रहिए, ऐसे पूरे थोड़ा उनको मलाम लगा देंगे, क्या बोलते हैं उसको। मलम लगा देंगे तो आपको बहुत धन देंगे वो लोग, आप भी चल सकते हैं, उनको भी लोग भी ऐसे चलता रहेगा जीवन। हाँ, लेकिन हमें समाज को परिवर्तन करना है, बदलाव लेने के आना है, वो हमारा संदेश, तो महत्वपूर्ण है ना। तो इसलिए अच्छा है, समझ में आ गए, समझ में आ गए हम क्या बोल रहे थे, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया कि नहीं। तो ऐसे होना चाहिए। अगला श्लोक लेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा दंडंजय सिद्ध्या सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो पिछले श्लोक का वो आगे बढ़ा रहा है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर संगम त्यक्त्वा धनंजया, जय और पराजय या फल, संगम त्यक्त्वा मतलब फल को त्याग कर, फल को आसक्त हुए बिना। सिद्ध्या सिद्धयो समो भूत्वा, जय और पराजय दोनों को समभाव से आपको कर्म करना चाहिए। इसको, इस समभाव को ही योग कहते हैं, ऐसे बोल। इसका अर्थ होता है, प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे योग शब्द का अर्थ, योग शब्द का अर्थ होता है कि जो सदैव चंचल रहने वाले इंद्रियों को वश में रखते हुए परतत्व में मन को एकाग्र करना चाहिए। तो उसको योग कहते हैं। इसका अर्थ है कि इंद्रियों के ऊपर हम लोग काबू पाते हैं योग, योग करने से तब इंद्र तृप्ति की इच्छा जो है नहीं रहती है, उससे क्या होता है हम लोग फलों से आसक्त नहीं होते, या जय हो अपजय हो पराजय हो उसमें कुछ उससे हम लोग प्रभावित नहीं होते, तो इसको योग कहते हैं। और अष्टांग जो है इसके योग, अष्टांग योग है क्या है, एक वो मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा इंद्रियों को हम लोग, इंद्रिया और मन को नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि वो अष्टांग योग के बारे में वर्णन कर रहे हैं, इंद्रियों के निग्रह करना। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वो श्लोक भी उल्लेख कर रहे हैं विष्णु पुराण से, वर्णाश्रम आचरिता पुरुषेन परपुमान विष्णुर आराध्य दे पंथा नान्य तत्तोष कारणम। वो श्लोक को यहाँ पर उल्लेख करके क्या समझा रहे प्रभुपाद, कर्म वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यथाकथित जो असुरी समाज है उसके अनुसार होना चाहिए, है ना। दूसरा पैराग्राफ में यहाँ पर देखिए, अर्जुन क्षत्रिय है अतः वह वर्णाश्रम धर्म के अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। संसार एक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है, अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो जनरली यहाँ पर समत्व, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इस श्लोक में, तो समभाव तो उसको ही योग कहते हैं, ऐसे कह रहे समभावना ही योग है। जब तक हम लोग समभाव नहीं रहते उसको योग नहीं कह सकते, या दूसरे शब्दों में इंद्रतृप्ति की आसक्ति है तो वो योग नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे थे, वो पाश्चात्य देश में जब वो प्रचार कर रहे थे, वो प्रवचन दे रहे थे एक जगह पर, तो वो कहते हैं कि जब भारत में था तब मेरे एक बिजनेसमैन था, वो मेरे ग्रंथों को क्या करते थे, वितरण किया करते थे, वो सेल किया करते थे। एक समय उन्होंने बताया, स्वामी जी अभी मैं आपका ग्रंथ को सेल नहीं कर सकता। क्यों? ऐसे प्रभुपाद जी ने पूछा। क्योंकि अभी जो सरकार के नियम है टैक्स के अनुसार, अच्छा है कि मैं कर्म ना करो, ये यू नो बिजनेस ना करो कुछ समय के लिए, उसको कम करो, क्योंकि वो बहुत लॉस होगा मुझे, तो टैक्स के कारण, ये नियम के कारण। तो प्रभुपाद बोल रहे थे क्यों कर्म कर रहा है वो, क्योंकि फल के लिए आसक्ति है, इसलिए जब वो हाँ मुझे अच्छा फल नहीं मिल रहा है तो क्यों कर्म करो, ऐसे तो ऐसे कहते हैं। और प्रभुपाद भी वो उल्लेख कर रहे थे ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, क्या है, सैंड टर्न सैंड इनटू गोल्ड, व्हाट इज दैट, प्रोप्राइटरशिप टर्न्स, प्रोप्राइटरशिप टर्न्स सैंड इनटू गोल्ड। वो पिछले श्लोक के लिए बहुत ज्यादा लागू होता है, कर्म का हेतु मत बनो, मैं इस कर्म का हेतु हूं, प्रोप्राइटर हूं मैं, प्रोप्राइटरशिप टर्न्स गोल्ड इनटू सैंड इनटू गोल्ड, उसके लिए बहुत मेहनत करके वो उसको करेंगे वो लोग, हमें कुछ लाभ मिलने वाला है तो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं लोग, है ना। तो लेकिन यहाँ पर ये सब यहाँ पर सीधी तरीके से वर्णन नहीं किया गया है। फिर फल से आसक्त ना होना, तो फल से क्या करना है, कर्म करने से तो फल मिलता ही है ना, तो सीधी तरीके से न कहा गया है यहाँ पर। तो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से योग शब्द का क्या होता है, भगवान से जोड़ना होता है, इसलिए भगवान को फल को अर्पण करना चाहिए। और ये श्लोक के दूसरा भाग, तात्पर्य के दूसरा भाग जो हम लोग पर क्या चर्चा कर रहे थे, वर्णाश्रम आचार्य का पुरुष विष्णु पुराण में परशर मुनि क्या है, परशर मुनि वो किस कर्म कहते हैं, वर्णाश्रम क्या है, विष्णु आराधना के लिए है, भगवान को आप सौंपना चाहते हैं तो वर्णाश्रम के अनुसार कार्य करना चाहते हैं और उनको उसे तुष्ट करना चाहिए, उसको कर्म योग कहते हैं। और यहाँ पर थोड़ा आप योग का मिश्रण, योग शब्द का परिभाषा दे रहे हैं, योग का मिश्रण हो रहा है, तो इसलिए ये योग मिश्र कर्म है। अगला श्लोक लेंगे, दूरे नाह्यावरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरण अन्विच कृपणा फल हेतव। पिछले श्लोक में भी धनंजय शब्द आया था, अभी इस श्लोक में भी धनंजय शब्द। पिछले श्लोक में धनंजय शब्द का क्या परिभाषा है, उसका महत्व क्या है, उसका क्या अर्थ है, कि भगवान आप धनंजय होकर क्षत्रिय के रूप में धन को विजय करने के लिए युद्ध किया था आपने पहले, है ना, अलग अलग राजाओं को साथ युद्ध किया था, अभी भी आप क्या करो तो युद्ध करो, ऐसे बोल रहे हो, आपको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, जैसे आपने क्षत्रिय बनकर आपने ऐसे युद्ध किया था तो अभी भी ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे भगवान बता रहे। सो दूरे न ह्यावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मन्विच कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। दूरे न यावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, तो बुद्धि योग के द्वारा ऐसे गर्हित कर्म दूर रखो, ऐसे बोल रहे हैं, अभी इन सब में कौन सा है जिसको वो दूर रखना चाहिए, बताइए। कर्म से दूर रखना चाहिए वो,
निकर्म
से दूर रहना चाहिए और अकर्म से ही दूर रहना चाहिए और इच्छित कर्म से, ये तीनों से उसको दूर रहना चाहिए और ये दोनों को स्वीकार करना चाहिए, ये इस श्लोक में बता रहे भगवान। दूरे ना ह्यावरम कर्म, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये पूरा हो जाता है ना, है कि नहीं? तो हमें सिर्फ ये नियत कर्म करना चाहिए, जो शास्त्रों में दिया गया है वही कर्म ही करना चाहिए, ये श्लोक पूरा उसको सिद्ध कर देता है कि नहीं? दूरे न ह्यावरम कर्म, आधुनिक जमाने में जो कर्म है वो घरहित कर्म है सब। लोग जाके ऐसे सीमेंट फैक्ट्री वहां पर जाके पूजा नहीं करना चाहिए उसका अच्छा बढ़ोतरी हो ऐसे ऐसा होता है ना बहुत सारा वहां पर जाके कीर्तन वगैरह कर सकते, प्रचार कर सकते वहां पर उसके विरुद्ध फैक्ट्री डंजन्स ऑफ हेल, प्रभुपाद जी बोले फैक्ट्रीज आर डंजन्स ऑफ हेल, क्या बोलते हैं हिंदी में, डंजन्स ऑफ हेल, नरकी खान, वो नर्क की गुफा है, फैक्ट्री मतलब नर्क की गुफा, फैक्ट्री में काम करना मतलब है ना, पहले गुफा मतलब अंधेरा सब रहता है तो, और उसके साथ साथ वो नरक, नरक की यातना रहता है उसके साथ साथ। अच्छा लगता है किसी को फैक्ट्री में काम करना? सभी कॉरपोरेशन ऐसा ही है अभी, वो जो कंप्यूटर के सामने जो सब काम करते हैं उनका भी ऐसा ही जीवन है, वो ऐसी हमेशा आर्टिफिशियल एक कृत्रिम वातावरण में काम करते हैं, उनके शरीर में क्या भूख हो रहा है, प्यास लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, तो इसलिए बहुत सारे रोग हो जाते हैं लोगों को। अभी 35 साल के एक व्यक्ति को आप देखिए, आईटी कंपनी में भी काम कर रहा हो, एसी में भी काम कर रहा हो, इतना सारे बीमारियां होते हो उसका, तो इसी सब नरक के हेल है सब, राइट और नॉट? उनको पता है वहां पर दुबई में तो ये नरक के हेल है, नरक डंजन्स, नरक की गुफाएं, डंजन्स ऑफ हेल। तो ऐसे ये सब कर्म दूर रखना चाहिए। दूर है ना यहाँ कर्म, बुद्धि योगा धनंजय, इनको बुद्धि योग करना चाहिए। बुद्धिया बुद्धियो शरणम अन्विच कृपणापन हेतव, और जो फल है उसको शरण, भगवान के शरण में सौंप देना चाहिए, और जो कृपण होते हैं फल हेतव, कृपण मतलब पहले हम लोग चर्चा किया ना, वो इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, जीवन का महत्व, मनुष्य जीवन का महत्व नहीं पता रहता है उनको, हाँ कुत्ते बिल्ली की तरह वो जीते हैं और मरते हैं, तो वो कुत्ते बिल्ली भी क्या है, सिर्फ इंद्र तृप्ति में उनका रुचि रहता है, तो ऐसे लोगों को कृपण कहते हैं, कृपण फल है तब। फिर से यहाँ पर धनंजय शब्द का उपयोग कर रहे थे, तो धन के जय करके वो क्या किया उन्होंने, इंद्र तृप्ति नहीं किया, उसको सौंप दिया राजस्व यज्ञ करने के लिए, है ना, राजस्व यज्ञ करने के लिए वो सौंप दिया। तो भगवान को राजस्व यज्ञ का उद्देश्य क्या था? राजस्व यज्ञ का उद्देश्य क्या था? भगवान का गुणगान हो, राइट है ना, भगवान का गुणगान हो सब जगह, उसका उद्देश्य था। तो इसलिए धनंजय, पहले आपने ऐसे किया था, ऐसे भगवान उनको याद दिला रहे, अभी भी मेरे गुणगान के लिए आप युद्ध कीजिए, ऐसे कर रहे। पढ़िए इस तात्पर्य को, 39वां श्लोक की केंद्रित
जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वे कृष्ण भावना में उपस्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का
देखिए
सिद्धांत।
यहाँ पर क्या बोल रहा है, कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है ना, क्लियर है ना, उनसे दूर रहता है।
जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है, केवल कृपण ही अपने सकर्म कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्भित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसता रहता है।
देखो, कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म है संपन्न कर किए जाते हैं वे गर्हित कर्म है, ये जो तात्पर्य, कोई भी इसको गलत अर्थ नहीं कर सकता। कोई फुटबॉल खेल रहे, उसको किसी न किसी तरह कृष्ण भावनामृत को अर्पण करो। हमारे एक भक्त क्या पर कर रहे थे, आप वर्णाश्रम का बारे में बोल रहे, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को कैसे आप कृष्ण भावनामृत में लगाएंगे, ऐसे वो उनका प्रश्न था। ऐसे व्यक्तियों को, इसलिए उनका क्या वो निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष क्या है, किसी न किसी तरह वो कृष्ण के लिए करो, ऐसे वो उन्होंने, वो हमारे भक्त ये नहीं सोच रहे कि उनको बदले, उनके कर्म को बदले, चेंज ट्रांसफॉर्म, उसके बारे में सोच नहीं रहे थे। हमें बदलना चाहिए, लोगों के कर्मों को बदलना चाहिए, उनको कृष्ण भावनामृत के कर्मों में लेकर आना चाहिए, नहीं तो वो ऐसे जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसे जाएंगे। और कभी
अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करना चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। विप्रों को यह ज्ञात है दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह से दुरुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण धाम नमृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। विप्रों की भांति अभाग्य व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाता।
तो ये सब कृपणता के कारण, कृपण दुर्बलता के कारण लोग ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर अपना सारे अर्जित सारे शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए बोल रहे, तो इसलिए, लेकिन कैसे पूरे होंगे, हमारे जीवन की जरूरत है, इसलिए जब ये कर्म करेंगे हम लोग, वो क्या है, वो भी कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अभी क्या है, ऑक्यूपेशन और भक्ति अलग हो जाता है, कृष्ण भावनामृत और जो हमारा कर्म जो है वो अलग हो जाता है, वो भक्तिमय नहीं होता है। ठीक है, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। प्रभुपाद उसके लिए भी एक उदाहरण दे रहे थे, कैसे हमें कारण, यहाँ पर एक आता है ना, यहाँ पर अतः कभी उसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि कर्म का कारण बनो, या माँ कर्म फल हेतु, वो 47वां श्लोक में प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे थे, जब एक व्यक्ति लकड़ी से लेकर एक सांप को मारता है तो वो क्या हो जाता है, वो मारने वाला होता है, लेकिन वो भगवान के हाथ में वैसे लकड़ी बन जाता है, इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, तो वो कर्ता नहीं बनता, भगवान कर्ता बन जाए, और जो भी होगा उस कर्म का जो भी फल होगा वो भगवान उसका जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है, नहीं तो हमें लोग हम लोगों को जिम्मेदारी लेना चाहिए, हम लोग भगवान का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेंगे। ठीक है। सो भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही उच्चे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। आधुनिक जमाने में क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका कोई भेदभाव ही नहीं रह गया अभी, है ना? कोई भेदभाव रहा उसमें? कोई बोलता है मैंने दूसरों को सहायता करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए क्या किया हूँ, एबॉर्शन क्लिनिक खोल चुका हूँ, ऐसे बोलता है। आई एम हेल्पिंग गर्ल्स, ऐसे बोलेगा वो, है कि नहीं? तो क्या बुरा है क्या अच्छा है उसमें कोई भेदभाव ही नहीं रहेगा। जस्ट डू इट, ऐसे कुछ करते रहो, एवरीथिंग इज ओके। तो विशेष करके यहां पर उबे सुकृत दुष्कृते, सुकृत दुष्कृते, पुण्य और पाप दोनों से क्या है, हमें अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए। क्यों पुण्य के पुण्य से भी मुक्त कर लेना चाहिए? क्योंकि पुण्य कर्म भी क्या हो जाता है, कर्म का बंधन बन जाता है। ये जो है तो वो भी हमें इस भौतिक जगत में वापस लेकर आए। पुण्य के जो अच्छे फल है उसको भोगने के लिए भी इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा ना, लेकिन अगला जीवन लेना पड़ेगा, इसलिए भी वो भी अच्छा नहीं है पुण्य कर्म में। और भक्त होने के बाद ऐसे पुण्य कर्मों में नहीं लगना चाहिए हम लोग, तो वो योग नहीं है। भगवान ये सब नहीं बता रहे, सब चीज करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, देश को सेवा करने के लिए, आधुनिक शिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए आप बहुत सारा ऐसे शिक्षण केंद्र खोल सकते हैं, लेकिन वो क्या है, वो पुण्य कर्म हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, उससे भी हम लोग बंध जाएंगे, वो हमारा कार्य नहीं है, वो योग नहीं है, उसको योगी नहीं कहते। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो ऐसे यहाँ पर भगवान बता रहे, जीवात्मा अनादिकाल से अपने उच्च तथा बुरे कर्मों के फलों से संचित करता रहा है, अनादिकाल से, अनादि कर्म फले फड़ी बवा नव जले थारी बारे ना देखी उपाय। तो भक्तिविनोद ठाकुर अपने गीत में अनादि काल से जीव क्या है, ऐसे कर्म के फलों से, कर्म और उसके फल में बंध गया, फलता वह निरंतर अपने स्वरूप के से अनभिज्ञ बना रहा, उसका मूल स्वरूप है उसे वो अवज्ञ अनभिज्ञ है। इस अज्ञान को भगवद्गीता के उपदेशों के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो कैसे इस अज्ञान से हम लोग मुक्त हो सकते हैं, तो वो भगवद्गीता के द्वारा, ये सिद्धांत को हमें स्वीकार करना चाहिए, हमारे जीवन को बदलना चाहिए, हमारे कर्मों को बदलना चाहिए हम लोग, तो तभी ऐसे अज्ञान से हम लोग दूर हो सकते हैं। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने के यही प्रक्रिया है। एक तर्क यहाँ पर आ सकता है, हम लोग कर्म को बदलने के लिए खूब बल रहे, लेकिन हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को चलाने के लिए भी कुछ लोग ऐसे चाहिए, जैसे कल एक लॉयर मिलने के लिए आए थे, है ना, ये सब लीगल थिंग्स देखने के लिए भी चाहिए कुछ लोग, तो ठीक है, वो लोग कुछ तो लोग रहेंगे वो शहर में, उनका सहायता ले सकते हैं। उनको प्रचार करके उनका सहायता ले सकते हैं, है कि ना? कुछ लोग तो बदलेंगे नहीं, वो लोग किसी न किसी कारणवश बदलेंगे नहीं, है ना? उनका ऐसा मतलब दे मे हैव प्रॉपर इंटेंशंस, है ना? जरूरी ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो अपने कर्म को बदल नहीं पा रहे, है ना? ऐसे व्यक्तियों का हम लोग सहायता ले सकते हैं, उनको प्रचार कर सकते हैं, है ना? किसी को भी हमें खोने का जरूरत नहीं है, है कि नहीं? तो ऐसे जन्म जन्मांतर यह पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिखर बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने के ही यही प्रक्रिया है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही बलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। इस तरह भगवद गीता में लगे रहकर, भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि वगैरह अथवा भक्तगण, तो आगे के अध्याय में वर्णन करेंगे। वो जनकादय बोलते हैं वहां पर भी, जनकादि लोगों ने ऐसे कर्म करके ही मुक्त हो गए ऐसे बोलते हैं। और जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्त हो गए। पदम गच्छन्त्यनामयम्, ऐसे पद पर प्राप्त हो गए जहाँ पर कोई सुख दुख नहीं, भौतिक जगत के दुख नहीं है। वो पद, वो कौन सा पद है, उसको भागवत में वर्णन किया गया। समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारी भवामुदीर वस्त पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो समाश्रित ये बहुत सारे बार पद 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 शब्द आ गए ना, इसलिए वो श्लोक उल्लेख किया गया। पदम गच्छन्त्यनाम है यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं। और ये दशम स्कंद के 14वें अध्याय के 57 श्लोक, 57 श्लोक। तो ये ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी के प्रार्थना है, ये भगवान से बोल रहे। समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम, तो आपके पद कमल के जो पल्लव प्लव है वो क्या है, एक नाव के समान है जिसको आश्रय ग्रहण करके बहुत सारे लोगों ने इस भव सागर को पार किया है। जो भव सागर मतलब ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है, भव सागर में जन्म मृत्यु का चक्र होता है इस भव सागर में। यहाँ पर भी भगवान क्या बोल रहे, पलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता। लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे बोल रहे हैं कि ये ऐसा नाव है, ऐसा जहाज है, नाव है जो हालांकि कई लोगों ने इसको उपयोग करके पार किया इसको, फिर भी अभी भी उपलब्ध है ये। इसका अर्थ कैसे होता है, जैसे कोई नाव से उस ओर चले गए तो वो नाव हमारे लिए उपलब्ध नहीं रहता, लेकिन एक ऐसा नाव है हमेशा उपलब्ध रहता है। कैसे होता है ये, ये सागर ही छोटा हो जाता है, ऐसा नाव है ये, तो सागर ही क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो सिर्फ उसके नाव में आप पार कर सकते हैं, छल के भी पार कर सकते हैं। तो उसको कैसे तुलना किया गया, एक बछड़े के खूर से तुलना की गई, वो सागर इतना बड़ा हो जाता है। भौतिक जगत का कितना डायमीटर है, कौन पड़ा है, ब्रह्मांड का कितना बड़ा डायमीटर है, पंचम स्कंद में वर्णन है ना, ब्रह्मांड का डायमीटर पंचम स्कंद में वर्णन आता है ना, कोई पढ़े रहे, वो कितना भी हो भक्तों के लिए कितना होता है, वो बछड़ों के खुर के समान है। पूरा इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसके 10 आवरण है, नहीं 8 या 7-8 आवरण है, वो सब इतना खुर के चिन्ह के समान हो जाता है। वो ये शब्द, ये श्लोक का अर्थ है। भवाम बुधिर वस्त पदम परम पदम पदम पद यद विपदाम न तेषाम। फिर से ये जगत में नहीं आते, ये जो कैसा पद है, ये पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर एक पग पर यहाँ पर विपत्तियां है, ऐसे कहते हैं। प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन करते हैं, अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पर पग पर संकट है। आप बाहर चले जाओ, तुरंत ही कोई आके आपको मार सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञ पुरुष यह सोचकर ही कर्म से वे सुखी रहेंगे सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। अज्ञानवशी वो लोग सोचते हैं हम सुखी रहेंगे करके, उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। ऐसा हम लोग ऊंचा परिवार में जन्म लिया, बहुत ही अमीर घर में, क्या शरीर वो दुखों से मुक्त है? नहीं, वहां पर भी शरीर तकलीफ देगा। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवत भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है, फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्ट में जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है कि भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स गॉड रियलाइजेशन। प्रॉपर वो जैसे हम लोग सूरज को अपने आप को देखने के लिए सूरज की सहायता होता है, वैसे भगवत हम अपना साक्षात्कार करने के लिए भगवत साक्षात्कार के बाद भी जरूरत होता है। ये याद रखिए उदाहरण, जो ब्रह्मवश या सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत गीता करने में, भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु में की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। तो मायावादी लोग क्या होते हैं, फिर से इस भौतिक भाव बंधन में आ जाते हैं। क्योंकि उनको मनीषिणा नहीं कहा जा सकता है वैसे लोगों को, क्योंकि वो लोग फिर भी अभी भी अज्ञान में रहते हैं और कर्ता मैं भोक्ता हूँ उसके जो चेतना है उससे वो मुक्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए फिर से भवबंधन में बंध जाते हैं। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। वो कर्म योग हम लोगों ने देखा, वही भगवत भक्ति है करके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कर्म कर्म शब्द आता है, इसका अर्थ हमें ये समझना नहीं चाहिए कि हमें कर्म, तो हमें भगवत भक्ति करना है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति तदा गमतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो कौन सा है वो, कौन सा घना जंगल है वो, मोह कलिलम, मोह रूपी सघन वन, कर्म फल से आसक्त होना या ऐसे कर्म करना, इच्छित कर्म करना, जो 42वां 43वां श्लोक में वर्णन किया गया, यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादत्त पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। तो ऐसे वो लोग काम आत्मना स्वर्ग परा, क्योंकि जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बोला भोग ऐश्वर्य गति प्रति, भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करना ही उनका गति होता है, लक्ष्य होता है जीवन का। और उसमें वो हमेशा लिप्त रहते हैं, वो मोह के इस घना जंगल में डूबे हुए हैं। तो जब हम उससे मुक्त हो जाते, क्योंकि 45वें श्लोक में भगवान ने उनको आदेश दिया कि आपको ऐसे घने जंगल से मुक्त होना चाहिए। निर्योग क्षेम आत्मवान तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे कि भक्ति योग को या ऐसे बुद्धि योग में लगने के कारण आप ऐसे मोह से मुक्त हो जाओ। तो मुक्त होने के बाद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो आपने सुना है या सुनने वाले उसे आप अनासक्त अन्य मनस्क हो जाओगे, इनडिफरेंट। उसके बाद में कुछ रुचि नहीं रहेगा वो कर्मकांड विधि में। तो विशेष करके वो घना जंगल क्या है, वो ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वो कैसे महान भक्त माधवेंद्रपुरी अनासक्त अन्य मनस्क हो गए, वो कुछ रुचि नहीं था उनको ऐसे चीज़ों में, ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को करने में ऐसे कुछ रुचि नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी भी ऐसे व्यक्त किया ना, उस श्लोक को हम लोग पढ़ रहे थे, भागवत से उस श्लोक से हम लोग पढ़ रहे थे ना। प्रभुपाद बोले हमें, हम नहीं चाहते थे कि ये कृष्ण बलराम मंदिर के जो उद्घाटन के समय ऐसे अनुष्ठान बनाए, लेकिन हमें अनुष्ठान बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि ये वृंदावन के निवासी ये हमारे भक्तों को स्वीकार नहीं करेंगे करके, तो वैष्णव करके ये लोग ऐसे कुछ अनुष्ठान नहीं बनाते, ये लोग पतित लोग हैं ऐसे सोचेंगे करके बाध्य होना पड़ा। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हमारे भक्तों के द्वारा जो संकीर्तन किया गया वो असली उद्घाटन था उस मंदिर का। तो ऐसे प्रभुपाद इन डिफरेंस ये अनुष्ठानों के प्रति उनको अनासक्ति वो व्यक्त कर रहे हो। तो यहाँ पर भी माधवेंद्रपुरी भी संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो गोस्नान तुभ्यम नमो गो देव पितरस्य तर्पणमिदो नाहं क्षमक्षम्यताम यत्र क्वापि निषिद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसद्विषः स्मारं स्मारं अगम हरामि तदलं मन्ये किं मन्ये न मे। हे मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठा हूँ यादव कुलवंशी कंस के हमता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। यादव कुलोत्तमस्य कंसद्विषः, तो यदुकुल में जो श्रेष्ठ है और कंस के हत्या करने वाले हैं उनको स्मरण करने ही मैं संतुष्ट हूँ, ऐसे बोलते हरि नाम संकीर्तन करते ही मैं संतुष्ट हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग संध्या वंदन करना सब छोड़ देना है, स्नान करना छोड़ देना 3 बार, ये सब परमहंस होते थे। ठीक है, तो इसलिए ना उस तात्पर्य में हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि भक्तों को स्वच्छ और शुद्ध रहने के लिए हम लोग पूजा आराधना भी करते हैं। भक्ति प्रभुपाद जी ने जीव गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दोनों को उल्लेख किया कि दोनों साथ साथ में चलना चाहिए। हम लोग जो संध्या वंदना करते हैं वो अर्चना के भाग अंग है, वो भी साधना भक्ति है। तो अर्चा विग्रह की सेवा और हरिनाम संकीर्तन दोनों साथ साथ में चलना चाहिए हमारे लिए। समझ में आ गए? ऐसा हो माधवेंद्रपुर ने बताया अभी मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन हमारे भगवान का स्मरण भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंत में प्रभुपाद बोलते हैं जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। जो भगवत भक्ति करते हैं उसको भी हम लोगों ने पहले चला, जो आपके नाम अपने जिह्वा के अग्रभाग में जो आपका नाम उच्चारण करते हैं तो वो पहले ये सब करके आ चुके हैं, ऐसे बोलते हैं। देवती। उसके पहले श्लोक में देवती माता बोलते हैं, जो नाम उच्चारण करते हैं वो 33वें तीसरे स्कंध के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक हम लोगों ने देखा। और 6ठे श्लोक में वो बोलती है कि बहुत ही शीघ्र ही वो यज्ञ यज्ञ का योग्य ब्राह्मण बन जाते हैं यज्ञ करने में। वो हालांकि कुत्ता के परिवार में जन्म लिया हो फिर भी वो योग्य ब्राह्मण यज्ञ करने के जैसे ऐसे ब्राह्मण बन जाते हैं। वैसे यज्ञिक ब्राह्मण बनने के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। पहले गुरु के साथ ब्रह्म गायत्री का दीक्षा लेना पड़ता है, फिर शास्त्रों का कठिनाई से अध्ययन करना पड़ता है। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करते हुए तो जन्मना जायते शूद्रा संस्कारो भवेद् द्विजः वेद पठेत विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। ब्रह्म को साक्षात्कार वेदों के वाक्यों को साक्षात अध्ययन करने के बाद उतना ही नहीं होता, उसका साक्षात्कार भी होना चाहिए। ऐसे ही हम लोग पैरट की तरह हम लोग श्लोक पाठ कर रहे हैं ना, है ना, वो कर दिया, ऐसा नहीं होता है, उसका साक्षात्कार तभी ब्राह्मण बनते हैं। तो देवती माता बोल रहे, लेकिन जो हरिनाम बोलते हैं वो तुरंत ही ऐसे योग्य ब्राह्मण के स्तर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं ऐसे योग्य ब्राह्मण बनने के बाद भी वो ये अलग अलग नियमों को पालन करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। विशेष करके अर्च विग्रह का सेवा वगैरह बंद नहीं करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने वो उल्लेख किया था। ठीक है, या अगला श्लोक। श्रुति विप्रप्ति पन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अलंकारिक भाषा, ये तीनों वेदों को छोड़ दिया, विचलित नहीं हुआ उससे, उससे प्रभावित नहीं हुए, वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगा ऐसे समाधो अचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि, ऐसे कहते हैं। तो ये और पिछले श्लोक जो है यो उसके लक्षण बता रहे हैं, जो कर्म योग बुद्धि योग में स्थिर है और स्थिर हो के ऐसे पुष्पिता वाचा से वो प्रभावित नहीं है या इंद्रित फल से आसक्त नहीं है, इंद्र भोग करने की इनको उनको इच्छा नहीं है इस भौतिक जगत का, तो ऊंचा स्वर्ग गति वगैरह प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तो उनके लक्षण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके विस्तार में अर्जुन यहाँ पर और उनको प्रश्न पूछेंगे। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्मों को कर्म करना। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति या भगवान की एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमय वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण के से प्राप्त सारे आदेश उन दिव्य अवस्था में समझ जाता है। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है, उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। तो यहाँ पर फिर क्योंकि संक्षेप में यहाँ पर उसके लक्षण बताए जो समाधि में स्थित है, तो अर्जुन और विस्तार से जानना चाहते थे। वास्तव में एक्चुअली अर्जुन को जरूरत नहीं था, लेकिन हम सब के कारण हम लोग अच्छी तरह से समझे इस व्यक्ति के लक्षणों को, तो इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य काभाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितति किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है। वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तो यहाँ पर तीन प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कभी कभी इसको चार भी कहा गया, लेकिन हम लोग इसको तीन मानेंगे क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसे। तो अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, उसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण, ये पहला प्रश्न था। लेकिन स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि केशव स्थित दी किम प्रभाषित, और उसकी वो कैसे बोलता है और उसकी क्या भाषा है, भाषा क्या है। किम आसीत व्रजेत किम, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो इनके अलग अर्थ होते हैं। कैसे बैठता मतलब उसके बैठने का कोई भी उसको, उसके बैठने का कोई भी उसका क्या अनुकरण कर सकते हैं, चलने का कोई भी अनुकरण कर सकते हैं। वो योगी बनता है क्या, वो समाधि में स्थित है क्या, वैसे समाधि में युक्त व्यक्ति का स्थित व्यक्ति के अनुकरण करने से नहीं, इसका अलग अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कैसे अपने इंद्रियों को वो उपयोग करता है और नहीं उपयोग करता है, कैसे उनको जब इंद्रिय विषय उनके ऊपर आक्रमण करते हैं उसको कैसे अंदर लेता है, वो बैठने के समान अर्थ होता है। इसलिए वो बोलते हैं ना, कूर्म का उदाहरण देते हैं 58वां श्लोक में, हाँ ठीक है। यदा संहरते चाहम कूर्मोंगानि व सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियाते व्यस्त तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों का संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह वो जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेता है। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्धि व्यक्ति कसौटी यह की है कि अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सकता है, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है, हाउ ही सिट्स, कैसे स्थित होता है, किम आसीत, उसका प्रश्न उत्तर है 58वां श्लोक, ठीक है। और कैसे वो अपने इंद्रियों को लगाता है, यततो अपि कौन्ते या पुरुषस्य विपश्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत, युक्त मतलब ये लगाना इंद्रियों को उसको चलने का समय, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं, हर एक व्यक्ति का लक्षण होता है, भक्त का भी लक्षण होता है ना, भक्त कौन है करके। उनके 26 लक्षण हम लोगों ने उस दिन भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव दिन हम लोगों ने चर्चा किया, उसमें से कृष्ण ही का शरणम, कृष्ण के शरण में शरणागत रहता है, वो प्रमुख लक्षण है। वैसे ही हर एक का लक्षण, ब्राह्मण का लक्षण होता है, क्षत्रिय का लक्षण होते हैं, वैसे आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का भी लक्षण होते हैं। ऐसे प्रॉपर अमीर व्यक्ति का उसका लक्षण होते हैं, गरीब व्यक्ति का उसका लक्षण होते हैं। लेकिन इन सभी लक्षण और उनके भाषा और उनके शब्द के बारे में प्रॉपर अर्जुन पूछ रहे हैं। इन सभी प्रश्नों में प्रॉपर वो दूसरा प्रश्न वो बहुत स्थित प्रज्ञश्च का भाषा प्रभाषेत किम, किम प्रभाषेत, ये जो प्रश्न है कैसे वो बोलता है और उसका क्या भाषा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है बोलते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति मुंह खोलता नहीं तब तक वो मूर्ख है क्या, वो समझ नहीं पाएंगे, है कि नहीं। वो सज्जन व्यक्ति है या सुशील व्यक्ति है उसको समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक मूर्ख आपके सामने बैठ के बोल रहे हैं, है ना, आप शांति से बैठे हो इसलिए आप सज्जन। तो जब तक एक व्यक्ति मुंह खोलता नहीं है तब तक ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग पहले श्लोक बोलते हैं ना उपदेश अमृत के, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम ये तन वेगान यो विषहेत धीरः सर्वम अपि माम प्रतिविंस शिष्यात्। तो वो कहते हैं कि वाचो वेग, वाणी की जो वेग है उसको नियंत्रण करना चाहिए, अर्ज ऑफ स्पीच। दो लोग साथ में आते हैं बक 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 करना शुरू कर देते हैं, पीपल टॉक ऑल नॉनसेंस, है ना। तो प्रभुपाद वो उदाहरण करते देते थे, मेंढक की तरह वो भगते रहते, फिर क्या है वो सांप आके उनका निगल लेता है, वैसे हमें मृत्यु आके निगल लेता है। एक बार वृंदावन में एक मौन बाबा थे, भक्त लोग आके बोले प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद ये मौन बाबा है, 15 साल से उसने कुछ भी बोला नहीं है। कभी कभी बाबा और साधुओं में भी नया नया क्या आते हैं, पैशन आते हैं। ये भी एक पैशन है मौन रहना, लेकिन मौन कैसे रह सकते हैं, वो लिख के बता देते हैं, वो लोग लिख के बताते हैं, वो भी बात करने के समय नहीं है ना, है कि नहीं, ऐसा नया पैशन बनाते हैं लोग। प्रभुपा जी उसके ऊपर बोले, अच्छा है कि वो बकवास बोलने से अच्छा है कि वो मौन रहे, क्योंकि ऐसे मायावादी लोग सब बकवास बोलते हैं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, भाषा क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है, और वो वाचो वेगम में क्यों, इसलिए पहले उसको बताया आप बोलने की जो अर्ज है, तीर वेग है, क्योंकि उसके कारण अन्य जो भी वेग है उसको नियंत्रण करने में मुश्किल हो जाता है, उसको इसलिए पहला। आप जैसे देखिए बहुत बोल दिया, मन विचलित हो जाता है, मन विचलित होने से क्या हो जाता है, क्रोध भी आ जाता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते सब भूल जाते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, तो क्रोध के कारण फ्रस्ट्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन के कारण जिह्वा उधर उपस्थ वेग को हम लोग संतुष्ट करते हैं। तो इसलिए वो सब कुछ कहाँ से शुरू होता है, वाचो वेग से शुरू होता है, इसलिए कम बोलना चाहिए। जपा में 10-15 मिनट थोड़ा बात करके हंसी मजाक करके वापस नहीं आना है, हाँ ठीक है। जपा करते समय सिर्फ जप करना चाहिए, मुंह खोल दिया तो सिर्फ कृष्ण के बारे में करना, ठीक है। पढ़िए तात्पर्य पढ़िए, ललित कष्ट प्रभु
प्रत्येक व्यक्ति को उसकी विशिष्ट शक्ति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना वाले पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, तथा उसका बोलना चलना सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, इस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रोग जाना जाता है, यहाँ की विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की पीढ़ी चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह होता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि गुण का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं, एक बने घने मूल को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ गुण प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उनसे संबंध विषयों के बारे में बोलता है, फिर अपने लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है।
ठीक है, श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् भारतान् मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टात्मिका प्रज्ञस्तदुच्यते। तो अभी भगवान इन प्रश्नों को एक एक करके उत्तर देते हैं। अभी पहला प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में उत्तर है, उसके क्या लक्षण है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह वे विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, चेतना को प्राप्त कहा जाता है, ऐसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। पहला क्या चीज, प्रजाहाति यदा कामान, सभी काम वासनाओं को हमें त्याग देना, भौतिक भोग करने की इच्छाओं को त्यागना चाहिए। सो सर्वान पार्थान मनोगतान, जो मन से क्या आते हैं, मन मनोगत है, मन के द्वारा निर्मित है ये सब, मैं ऐसे सुखी हो जाऊंगा, ऐसे सुखी हो जाऊंगा, ये करो मन बोलता रहता है ना हम लोगों को, ये करो तुम ऐसे करने से बहुत सुखी हो जाएंगे, बहुत आनंद मिलेगा तुमको, ऐसे बोलता रहता है। ये मनोगत है, और जो सुख जो प्राप्त होता है वो करने से वो भी मनोगत है, फैंटेसी बोलते हैं उसको। उस दिन मैं बता रहा था ना, सिनेमा देखने के लिए लोग जाते हैं, वो अंधेरा सिनेमा घर में बैठे रहता है, अंधेरा अलग अलग भूत प्रेतों के द्वारा साथ। और जब वो हीरोइन हीरो के पीछे पीछे भागती है, वो पेड़ के इर्द गिर्द, ये इसको आनंद आ जाता है इसको। क्यों आनंद आ जाता है? अपने मन के द्वारा ऐसा सोच रहा है, मैं ही वहां पर घूम रहा हूँ करके, या मेरे पीछे ही वो हीरोइन घूम रही है। तो इसको मनोधर्म कहते हैं, मन कल्पना कहते हैं, मनोगतान कहते हैं। सब दुनिया ऐसे ही चल रहा है मनोगत के कारण। ऐसे ही चलता है मनोगत, है ना। अपने आप को उसमें हम लोग डाल देते हैं, नहीं तो ऐसे क्यों होता है, उसको आनंद कैसे होता है? वो तो अंधेरा, वो घोर, वो हॉल में बैठा है, वो ऐसे सुंदर, वो लोग गाना कहाँ पर गाते हैं, वो हीरो हीरोइन बहुत ही सुंदर स्थान पर उसका शूटिंग किया जाता है, ये अंधेरे जगह में बैठा है, लेकिन वो सोचता है कि मैं ऐसे सुंदर स्थान में घूम रहा हूँ, ऐसे बोलता है। और जो ये वो भी हीरोइन को किडनैप कर देता है, रोना शुरू कर देता है, ये अंधेरे उसका पत्नी साथ में बैठी रहती है, फिर भी ये रोता है। तो ये मनोगत है, मनोधर्म है, फैंटासी बोलते हैं इसको। प्रभुपाद एक कथा बताते थे, एक गरीब व्यक्ति था, उसका कितना था, उसका पूरा घर कितना था, वो झोपड़ी 3x6 सोने का, और उसमें लेट के वो क्या कर रहा है, बहुत कल्पना कर रहा है, वो प्लान बना रहा है, कल्पना कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, स्वप्न देख रहा है, दिन दिन में स्वप्न देखते हैं ना वैसे लोग, वो स्वप्न देख रहा है, मेरा ये जो क्या है पॉट्स घड़ा है, उसको मैं बेच के क्या करूँगा, और खरीदूँगा, और खरीद के उसके बेचूँगा, उसको बेच के और खरीदूँगा, ऐसे बहुत अमीर बन जाऊँगा, अमीर बनने के बाद मैं एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति के घर से एक स्त्री को विवाह करूँगा, वो स्त्री जो मैं बोलता हूँ वो नहीं मानेगी, तो उसको एक लात मार दूंगा, ऐसे लात मार दिया और दो जो दो गड़ा जो है वो भी सब नष्ट हो गया, ऐसा ये फैंटेसी। और आशा में आशा पाश में बद्ध रहते हैं, कैसे मनोगत, वो कैसे मन में कैसे वो आशा बनाते हैं वो लोग। प्रभुपाद एक और कथा भी बताते, दो क्या थे गधे थे, और दोनों गधे बहुत मित्र थे, एक बार एक गधा बहुत प्रगति करके वो क्या कर दिया, विप्रो या इंफोसिस में काम ले लिया उसने। दूसरा गधा वो अपने जो हरा घास है वो काता, ऐसे चलते गया वो, अपने जीवन सरल जीवन बिताते गया वो। ये दूसरा गधा वो बहुत मेहनत करके प्रगति करके क्या कर दिया, ऐसे काम में बड़ा अस्पताल में काम लिया ऐसे, है ना। तो फिर बहुत समय के बाद दोनों मिले वो, तो वो जो जंगल में खास खाता हुआ जो गधा चला गया, वो उसको अपने मित्र को बचा। तुम क्यों इतना संघर्ष और मेहनत कर रहे हो, इतने सारे यू नो हरा घास उपलब्ध है जंगल में, आ जाओ, क्यों ये संघर्ष कर रहे हो? तो इसने बोला, छुप रहो छुप रहो, ऐसे मत बोलो ऐसे बोलो। तो फिर उसने बताया, तुम्हें पता नहीं एक दिन जो मेरा स्वामी है वो कौन है, वो इंफोसिस में नारायण या विप्रो में अजिम प्रेम जी कौन कोई है, वो कोई है, उसने अपने पुत्री को डांट रहा था, तुम अगली बार ऐसे बोलोगी या ऐसे करोगी, तुम्हें मैं अपना जो गधा है उससे शादी करके छोड़ूंगा। और ये गधा सोच रहा है, बड़ा आशा कर रहा है, क्या है, मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा इसके साथ विवाह करके। कोई गधे के साथ विवाह करता है क्या, कराता है क्या? तो लोग गधा बन गया है ना। तो गास है, कहीं भी अब उपलब्ध है। एक्चुअली जीवनी निभाने के लिए, पेट भरने के लिए ऐसे मेहनत करने का जरूरत नहीं, जो ये लोग मेहनत कर रहा है ऐसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये सब अपने स्वनिर्मित भोजा है, ये भौतिक जगत, भौतिक समाज, आधुनिक भौतिक समाज जो है, पेट भरने के लिए उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, है कि नहीं? आप लोग ऐसे हर रोज एक घर घर में प्रोग्राम कर दिया तो आपका पेट या इतना गोवर्धन बन जाएगा कुछ समय के बाद, है कि नहीं? उसके लिए नहीं करेंगे हम लोग, खुद कृष्ण भक्ति के लिए, प्रचार करने के लिए करेंगे। लेकिन समस्या होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ऐसे हमें तो इसके लिए संघर्ष करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? पहले जमाने में गृहस्थ भी जो होते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, आप पढ़ लीजिए 7:14:10 सातवें स्कंद के दसवें ना सातवें स्कंद के 14वें अध्याय के 10वां श्लोक के तात्पर्य पढ़िए। उस श्लोक में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे, हमारा जीविका गृहस्थ होते हुए भी हमारा जीविका बहुत ही सरल होना चाहिए ऐसे बोलते। तो बोलते हैं उसी में प्रभुपाद बोलते हैं, सभी हमारे आंदोलन का उद्देश्य है कि समाज को वर्णाश्रम में विभाजित करना चाहिए और सिर्फ जो वैश्य गृहस्थ होते हैं वही लोग इसे आर्थिक विकास में लगे रहना चाहिए ऐसे बोलते। तो उस तात्पर्य में, और ये कैसे टेक्नोलॉजी क्या है, ये उग्र कर्म है, तो उस उग्र कर्म करने के कारण मन में एक विचलित भाव प्रकट हो जाता है, विचल एक है ना, डिस्टर्बेंस इन द माइंड। उसको संतुष्ट करने के लिए लोग क्या कहे, बड़े बड़े ऐसे वैश्यागर्भ खोल रहे हैं, बड़े बड़े स्लॉटर हाउस खोल के मांस भक्षण करते हैं और नशापान करते हैं, व्यभिचार करते हैं। तो ये सब ये तकनीकी के कारण, उग्र कर्म के कारण होता है। इतना मेहनत होता है ना, गधे का काम है ना, वो गधा गधा मेहनत करता रहता है, दिन भी नहीं रात को भी करना पड़ता है। तो ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं ये उग्र कर्म है, सीवियर। वो डॉक्टर लोग भी अभी रात दिन रात मेहनत करना पड़ता है उनको भी, इतना पेशेंट बढ़ गया लोग, क्योंकि कृत्रिम जीवन बोलते हैं सब लोग रोगी हो जाते हैं ऐसे जीवन शैली के कारण। पहले जमाने में इतना सारा रोग नहीं थे, है ना, ये बड़े बड़े कैंसर वगैरह कहाँ पड़ते हैं, सब नया नया रोग आ रहे हैं। उसके लिए और व्यवस्था करो, और पढ़ाई करो, और क्या करो, मेहनत करो, सब जरूरत नहीं था। हम इसलिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ जीविका निभाने के लिए नहीं है, ये लोग ऐसे कृत्रिम चीजों को आशा करके हम लोग ऐसे सुखी होंगे करके मेहनत करते रहते हैं। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति इसको त्याग देता है, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पाता मनोगतान, आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा स्तुच्यते, वो सिर्फ आत्मा के कार्यों में लगे रहते, भक्ति के कार्यों में लगे रहते, कृष्ण भगवान होते। तो इसके लिए कोई उदाहरण देंगे आप, जो भौतिक भोग करने की कामना जो है वो सब त्याग दिया उन्होंने, ऐसा कोई उदाहरण? यमुनाचार्य और रघुनाथ दास गोस्वामी, ध्रुव महाराज अच्छा उदाहरण है। उन भोग चाहते थे लेकिन जब भगवान के संपर्क में आने के बाद वो छोड़ दिया। स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे, मुझे मैं बहुत बड़ा ये जो ये ना कागज के टुकड़ों को ढूंढने के लिए आया लेकिन मुझे बहुत बड़ा वज्र मिल गया, तो इसलिए मैं अभी मुझे कुछ वर नहीं चाहिए, ऐसे संतुष्ट हो गए। आत्मनेवात्मना तुष्ट हो गए, ठीक है। और सनातन गोस्वामी भी क्या है, उनके पास भी वो चिंतामणि था, वो ना प्रभुपाद बोलते हैं ना कथा बोलते हैं, तो ऐसे वो कूड़ादान में फेंक दिया था उसको। संतुष्ट है अपने आप में, अपने भक्ति कार्य में, है कि नहीं? तो ये आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के लक्ष्य। आगे जाके भगवान भी बोलेंगे उस व्यक्ति को क्या है, जो सोना है पत्थर जो है एक समान लगते हैं उसका, छठे अध्याय में भगवान बोले। तो ये लक्षण है इस व्यक्ति का, समाधि में स्थित व्यक्ति का लक्षण। वो चमक दमक के वस्तुओं से आकर्षित नहीं होते वो, है कि नहीं? ब्रह्मचार्य ऐसे चमक दमक के वस्तुओं से आकर्षित नहीं होते, बड़े बड़े लैपटॉप, बड़े बड़े लैपटॉप, वो आत्मा के कार्यों में संतुष्ट रहते। भगवान की सेवा करना, प्रसाद ग्रहण करना, नाच कूदना, कीर्तन में, शास्त्रों को अध्ययन करना, प्रचार करना, यही कार्य है, ठीक है? अन्य कोई इच्छा नहीं है, ठीक है? श्रीमद् भागवत में पुष्ट हुई है, मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्ति होता है तो उसे महर्षियों के समक्ष सद्गुण पाए जाते हैं। कौन सा श्लोक बताइए? यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासतो दावतो बहि। वो मन के रथ में जाता नहीं है, यहाँ पर मनोगतान शब्द है ना, मन के रथ में नहीं जाता है। मन के रथ में जाके वो ऐसे मन बनाता है, कल्पना करता है, ऐसे मधुर सुंदर जीवन बताऊंगा मैं ऐसे कर। ये सभी भौतिक इच्छाएं मनोगत है, मन के रथ में। भक्त मन मनोगत में नहीं जाता है, वो अभक्त अभक्त लोग ही मनोरथ में जाते हैं, मनोगतान उससे मुक्त रहते हैं भक्त लोग। तो मन को हमेशा वो ऐसे बोलेगा तुम ये करो बहुत है ना प्रे, आपको बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन वो भक्त क्या कहता है, चुप हरिनाम जप करो, ऐसे बोलेगा ना उसको, ऐसे मनोगत से मुक्त हो जाएगा। प्रभुपाद वो बोलते हैं 17वें अध्याय में जो मन के तपस्या, जहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं वहाँ पर कैसे मन को तपस्या होती है, वो इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से उसको जब दूर लेकर जाते हैं हम लोग, तब उसको मन की तपस्या होती है। तो वो कैसे करना चाहिए, प्रभुपाद बोलते हैं वैसे महाभारत रामायण जैसे उसमें बहुत सारे भागवत में वगैरह बहुत सारे सुंदर सुंदर कथाएँ हैं, उसको सुनने में या उसको श्रवण करने में या उसको पढ़ने में लगाना चाहिए मन को, तब इंद्र तृप्ति की इच्छा से वो चले जाते हैं। आप लव स्टोरी सुनना चाहते हैं इस सुनो यहाँ से, है ना, बहुत सारे हैं। इससे अच्छा इंटरनेट में जाके सिनेमा देखने से अच्छा है भागवत पढ़ो, है ना, क्या क्या नहीं मिलेगा हम लोगों को भक्ति में, सब है, ठीक है। सब पुरु रवा उर्वशी सब कथा सुनो, अग्निंद्र पूर्वचिति सब, उसके साथ साथ बहुत सारे शिक्षाएं मिल जाते, ठीक है। उर्वशी बोलती है स्त्री का हृदय क्या है, वो ब्लेड के समान है, उर्वशी स्वयं स्त्री बोलते हैं उसको। और कश्यप मुनि भी बताया शरद पद्मोत्सव वक्त्रम वचस्त्वा श्रवणामृतम हृदय क्षूरधारावाम स्त्री नाम को वेद चेष्टितम। तो उनके मुख जो है शरद पूर्णिमा के शरद महीने के जो शरद महीने में कमल खिलता है ऐसे सुंदर रहता है, और वाणी श्रवणामृतम वचस्त्वा श्रवणामृतम कान के लिए अमृत के समान है, लेकिन हृदय क्या है क्षूरधारा। क्यों ऐसे होता है वो, क्योंकि वो अपने इच्छा पूर्ति के लिए आपके साथ में रहते हैं, वो उनकी इच्छाएं रहते हैं बहुत सारे उसको पूरा करने के लिए। हृदयम क्षूरधारावाम, और कश्यप बोलता है स्त्री को कौन समझा है आज तक, बहुत सारे कवियों ने ऐसे गीत लिखा है आप ऐसे है आप ऐसे हो ऐसे है ये स्त्री ऐसे है करके, कोई समझा नहीं दुनिया में इतिहास में। ये वास्तव जो भागवत में वर्णन आता है वो असली, तो ये याद रखना चाहिए ब्रह्मचार्य। यू कैन सर्च नंबर अभी याद। तो भक्त के अंदर सभी अच्छे गुण रहता है, तो अच्छे गुण में क्या है विशेष गुण भक्त के अंदर, इस श्लोक के संपर्क अंतर्गत वो मन के रथ में नहीं जाता है, मनोगतान वो मन के इच्छा मन जो कॉन्कर्ट करता है वो इच्छाओं को त्याग देते हैं। वो महत्वपूर्ण है। तो अगला श्लोक लेंगे। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है कि उनके क्या लक्षण हैं। उनके पहला लक्षण क्या है, वो मनोगत प्रजाहत यदा कामन, ऐसे काम इच्छाओं को त्याग देते हैं और आत्मा के कार्यों में संतुष्ट रहते हैं। बस वो पहला, हाँ वो लक्षण है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लक्षण बता रहे हैं। दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित निरुष्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अतः सुख दुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है, भाषा क्या है उसका। ये अगले दो श्लोकों में उनके उत्तर देते हैं। दूसरा प्रश्न का, उसके भाषा क्या है, या दूसरे शब्दों में ऐसे कोई उनका निंदा करते हैं, गुणगान करते हैं, वो कैसे उसको स्वीकार करता है, क्या उसका किन शब्दों से उसको वो रिएक्ट करता है, तो वो अर्थ है यहाँ पर। दुःखेषु अनुद्विग्न मनः, तो उसका मन विचलित नहीं होता है, तो हमेशा ऐसे शोक नहीं करता रहता है दुख के कारण। वो ऐसे ग्रम्बलिंग कहते हैं ना, ऐसे बोलता रहता है, ये क्या ऐसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ऐसे नहीं बोलता है वो। तो ये भगवान की कृपा है बोलता है। सत्येन कंपा सुषुमिक्षमाण गुंजाना ये कृप्तम ही पाकम तद्वा वपुर्भिर विदधा नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सभाय। भगवान मुझे मेरे कर्म के अनुसार बहुत चारा देना चाहिए था, मुझे कम करके वो अपने कृपा के कारण कम करके दे रहे, या अपने कृपा के कारण मुझे ये ऐसा साक्षात्कार करा रहे। ऐसे भगवान को विददान नमस्ते, ऐसे अपने पूर्व किए हुए कर्मों को भुगतते हुए अपने भक्तिमय जो कार्य है, भगवान को दंडवत नमस्कार करना वगैरह, विददान नमस्ते, वो विधि में विधि भक्ति पालन करते हुए जाता है, ऐसे भक्त क्या हो जाता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं। जो ज्ञानी बोलता है तो ये दैव से ऐसे हो रहा है, जो कर्मी होता है मेरे पूर्व जन्म के कर्म के फल है ये, ऐसे वो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग इसका प्रतिक्रिया बोलते हैं। जब दुख आ जाते हैं, यहाँ पर दुख मतलब तीन त्रिविध ताप बोलते हैं, आदि आत्मिका, आदि दैविका, आदि भौतिक क्लेश, तीन ताप। आदि दैविक, आदि आत्मिक मतलब जो मन और शरीर से जो ताप आते हैं, क्लेश आते हैं, उनको आदि आत्मिक कहते हैं। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों के द्वारा जो क्लेश आते हैं, या दूसरे भक्तों के द्वारा जो क्लेश आता है है ना, आश्रम में आके जो कमांडर से जो क्लेश ऐसा सोचना नहीं चाहिए, कमांडर हमारे ऊपर दया कर रहे हैं, हमें भगवान सेवा में लगा के, नहीं तो हम लोग मनोकल्पना में चले जाएंगे, इसलिए उनको खींच के आते हैं। आप मन के रथ में मत जाइए, भक्ति की सेवा में लग जाइए, ऐसे बोलते हैं। तो आदि भौतिक क्लेश और आदि दैव के क्लेश, जो दैव के द्वारा, देवों के द्वारा आते हैं, तो बड़े बड़े बहुत सारा गर्मी, बहुत सारा सर्दी, भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी या ऐसे सुनामी वगैरह होते हैं, ये त्रिविध ताप आते हैं, तो वो उनका मन अनुद्विग्न नहीं होता है, वो ऐसे रिएक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। और सुख से भी वो बहुत हर्षित नहीं हो जाते, सुखेषु विगत स्पृह ऐसे कहते हैं। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसे बोलते। और वीतराग भय क्रोध, बोलने वाला था मैं, बोल रहा हाँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये दुख हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है, विशेष करके कलयुग में ये आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक कुछ ना कुछ तकलीफ देता ही रहता है। भौतिक प्रभुपाद बोलते हैं, दे मे कम ऑल एट अ टाइम, दे मे असाइल वन एट अ टाइम और ऑल एट अ टाइम, असाइल शब्द वो हमारे ऊपर प्रहार कर सकते हैं, एक ही कर सकता है एक समय पर, या एक ही तीनों एक ही समय पर कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ये बहुत ही जगत है। तो यहाँ पर और आगे वीत राग भय क्रोध, तो अनुराग भय क्रोध से मुक्त रहते। प्रभुपाद इसको अच्छी तरह से यहाँ पर समझा रहे। ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संगत से, मैं बीच से पढ़ रहा हूँ, संगत से तनिक भी विचलित नहीं होते, क्योंकि वे इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। वो श्लोक हम उल्लेख कर रहे थे ना, तत्तेनुकंपा सुषमिक्षमाना भुंज्यान एवात्म कृतम विपाकम, वो भी ब्रह्मा जी ने कहा है। तो ऐसी इसी प्रकार प्रभुपाद बोलते हैं, वो भक्त का एक जीवन शैली कैसे होना चाहिए, वो जीवन का मार्गदर्शक है वो श्लोक, ऐसे बोलते। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। तो ये वह सोचता है कि भगवत कृपा से ऐसे सुख स्थिति में है और भगवान की सेवा में और अच्छी तरह से कर सकता है, तो ये सुकेशु विगत स्प्रह, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता है। कोई आपको प्रेम दे रहे हैं नहीं प्रेम दे रहे, उससे वो विचलित नहीं होता है। ये लोग मेरे समझते नहीं हैं या मुझे कुछ ऐसे प्रेम देते ही नहीं हैं, ऐसे उससे विचलित नहीं होता है। राग और विराग, राग का अर्थ होता है अपने इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ होता है ऐसे इंद्रियों के आसक्त का अभाव। क्या राग और विराग क्या है, अच्छा और बुरा क्या है यहाँ पर? जो हमें मन और इंद्रियों के लिए संतुष्टि मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राग कहते हैं, और जो नहीं देता है उसको विराग कहते हैं, या उसको ही प्रेम कहते हैं और उसको ही द्वेष कहते हैं बस, और जो ये करता है उसको मित्र और शत्रु मानते हैं बस। यही बहुत ही जगत है, मन और इंद्रियों के स्तर पर है बस। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वो क्रुद्ध नहीं होता। हमें फ्रस्ट्रेशन आता है ना, क्रुद्ध फ्रस्ट्रेशन, तो अब कभी कभी ऐसे महान भक्त भी ऐसे फ्रस्ट्रेशन उनके लीला में भी हम लोग देखते हैं। प्रभुपाद जी भी 1970 में उनके शिष्य लोग बहुत तकलीफ दे रहे थे उनको, इसलिए उन्होंने थमल कृष्ण महाराज को एक खत लिखा, उन्होंने मुझे यहाँ से लेके दूर लेके चले जाओ, ऐसे फ्रस्ट्रेट होके। ऐसा भी वर्णन है कि प्रभुपाद जी वो मंदिर छोड़कर पीछे के दरवाजे से चले गए करके, तो इतना बहुत वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि वो सभी लोग उनके प्रति उनको सम्मान नहीं कर रहे थे। और वो लोग सम्मान नहीं करते हैं तो प्रचार नहीं कर सकते भक्त लोग, है ना, महान भक्त प्रभुपाद जी वगैरह। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी ऐसे हुए थे, तो उनको जब वो वहाँ पर वो मायापुर में रह के वो जब प्रचार कर रहे थे, तो और वहाँ का जो जो जगह स्थान है वो मायापुर जो जन्म स्थान, वो नया जन्म स्थान ढूंढ लिए थे, नया मतलब वही मूल जन्म स्थान जो भक्ति विनोद ठाकुर ने ढूंढा था उसको विकास कर रहे थे, और उनको सब जगह प्रचार कर रहे थे जोरदार, ऐसे सहजीवों के विरुद्ध अपसंप्रदायों के विरुद्ध वो लोग क्रोधित होकर इनको कहीं भी कोई भी प्रचार का अवसर नहीं देना चाहिए, उनको प्रवचन करने के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए, बाहर पब्लिक प्रोग्राम करने के लिए नहीं देना चाहिए, कोई भिक्षा नहीं देना चाहिए, ऐसे वो लोगों ने उनके विरुद्ध छेड़ दिया। तो उसके कारण बहुत समस्या सामना करना पड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लोग, कुछ समय के लिए वो प्रचार करना बंद कर दिया उन्होंने, लेकिन फिर से उनके स्वप्न में सभी उनके, ये तो भक्ति विनोद ठाकुर और उनके गुरु महाराज भक्ति गौर किशोरदास बाबू जी महाराज के तिरोभाव के बाद ये सब ऐसे होता है। तो फिर उनको सिद्धांत सरस्वती, हम सब लोग और पंचतत्व भी आते हैं, हम सब लोग आपके साथ है, इसलिए आप आगे बढ़ो, निरुत्साही मत बनो। फिर से वो जोर से प्रचार शुरू कर रहा, गौड़ीय मठ को खोलते हैं और जोर से प्रचार करना शुरू करते, और उनके तथाकथित गुरु भाई जो भक्ति विनोद ठाकुर के अनुयायी थे शिष्य, वो भी उनको ऐसे कह रहे थे आप प्रतभ्रष्ट हो गए करके भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षाओं से। तो ऐसे बहुत सारा करना पड़ा, और भक्ति विनोद ठाकुर को भी वो पूरा एक वो आर्टिकल ही लिख दिया उन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर अपने जो फ्रस्ट्रेशन निराशा है उसको व्यक्त करते हुए वो कहते हैं, वो ये सज्जन तोषणी, वो सज्जन तोषणी जो वो पत्रिका है को ही संबोधित कर रहे हैं, तो अभी शांत रहो अभी कि ये दुनिया के लोग कभी बदलेंगे नहीं, उनके भौतिक प्रकृति के स्वभाव जो उन्होंने भौतिक गुणों के कारण स्वभाव स्वीकार किया वो बदलना बहुत मुश्किल है, ऐसे वो कहते हैं। तो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए तो दुखी मत हो। तब चैतन्य महाप्रभु उनको एक श्लोक सुनाते हैं, मतलब उनके स्वप्न में या ऐसे उनको सुनाते हैं, खाल खलीर बलिन इंद्रिय वैरी वर्ग श्री भक्ति मार्ग य कंटक कोटि रुद्ध आह क्वयामि विकला किमहं करोमि चैतन्य चंद्र यदि नात्य कृपां करोसि। ये चैतन्य चंद्रामृत जो प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है वो वहाँ से है ये श्लोक। ये कलियुग है, काल खलीर बलिन इंद्रिय वैरी वर्ग, हमारे वैरी वर्ग जो इंद्रिया है बहुत शक्तिशाली है, और भक्ति मार्ग में कंटक कोटि रुद्ध बहुत सारे कांटे हैं। तो हम लोग सोचते हैं भक्ति मार्ग क्या है, एक फूलों से फैलाया हुआ बहुत ही मुलायम गद्दे के समान हम लोग सोचते हैं, लेकिन वास्तव में जो भक्ति करते हैं वो लोगों का ऐसे कंटक कोटि रुद्ध उनको सामना करना पड़ता है, वो वास्तविक भक्ति का लक्षण, जानबूझकर हमें उसको स्वीकार करना नहीं है, लेकिन वास्तविक जो प्रचार करते हैं उनको ऐसे सामना करना पड़ता है, असली में जो प्रचार करते हैं उनको ऐसे खोटी सामना ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद और भक्ति विनोद ठाकुर वो असली में प्रचार कर रहे थे, इसलिए उनको ऐसे समस्याओं को सामना करना पड़ा। वो भक्ति विनोद ठाकुर का क्या समस्या था, उन्होंने भी प्रचार, वो आने से पहले बहुत सारे सब अपसंप्रदाय थे, कोई शुद्ध भक्त नहीं था, शुद्ध भक्ति का कोई एक बास भी नहीं था, नामो निशान नहीं था। फिर वो आके शुद्ध भक्ति को प्रचार करने लगे, और बहुत सारे ऐसे सहजी या अपसंप्रदाय वाले बाबा जी लोग, मायावादी लोग, निराकर निर्विशेषवादी लोग, सब लोग भक्त बन गए उनके प्रचार के प्रभाव से। फिर उसके बाद में क्या हो गया, फिर से वो अपने रास्ते में चले गए, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर बहुत निरुत्साही हो गए। तो ऐसे वो, तो भगवान ने हमें ये श्लोक सुनाया हमारे कान में, ऐसे वो लिखते हैं, वो अपने निराशा को व्यक्त करते हैं। तो अभी उन्होंने बताया, हे सज्जन तोषणी शांत रहो, इनका स्वभाव को बदलना मुश्किल है, ये कलियुग है, तो ये इंद्रिया बहुत प्रबल है, भक्ति मार्ग में बहुत सारे खंडक है, इसलिए इन जीवों को उद्धार करने के लिए, पूरे दुनिया के बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए यहाँ पर बैठ के क्या करो, नाम का उच्चारण करो, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए वो वहाँ पर भजन कुटीर शुरू करके जगन्नाथपुरी में वो नाम भजन, निरंतर नाम भजन किया उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर दुनिया के उद्धार के लिए। तो ऐसे लिखते, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो दूसरा मार्ग अपनाया, वो युद्ध छेड़ दिया उन्होंने, वो शांति पर। भक्ति विनोद ठाकुर का तरीका क्या है, दूसरों से मिल के उनसे संबंध स्थापित करके, बहुत ही स्नेह को स्थापित करके, वो ऐसे सबको मिलते जुलते थे, ऐसे वो प्रचार किया उन्होंने। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं, थोड़ करके युद्ध ही छोड़ दिया, तो इसलिए वो तरीका बदल दिया, तो ऐसा तरीका नहीं चलेगा। एनीवे, लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भक्त लोग जीवन निराशा इसलिए होता है, हम लोग निराश होंगे, हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए ऐसे उनकी लीला भगवान व्यवस्था करते हैं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि वो लोग हमारे, वो सब लोग ये आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, यहाँ पर जो स्थित प्रज्ञ के बारे में जो वो हमें प्रेरणा देने के लिए ऐसे उनकी लीलाएं होते हैं, वो लोगों ने क्या किया उस समय पर, कैसे भगवान का आश्रय लिया उन्होंने, तो उसके उसको समझाने के लिए। तो विराग फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजयी हो या ना हो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प में का पक्का होता है। तो ऐसे कोई उदाहरण जो पक्के रहे भक्ति में, बहुत सारे कष्ट आए फिर भी दुखेश अनुदिग्न मह, ऐसे कोई प्रहलाद महाराज, पांडव, ये सब उसके लिए उदाहरण, हरिदास ठाकुर। और यहाँ पर एक और शब्द बहुत महत्वपूर्ण, स्थितधीर मुनि रुच्यते, ये स्थितधीर मुनि, सामान्य मुनि क्या होते हैं, वह मन को विचलित करने में बहुत ही मन को एक्सरसाइज करने में बहुत ही वो लोग निपुण रहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थितधीर मुनि मतलब जिनका मन भगवान में स्थिर रहता है, उनको स्थितधीर मुनि कहते हैं, वो अंतर है। नारद मुनि, सुखदेव मुनि ऐसे कहते हैं ना हम लोग, ये सामान्य मुनि की जैसे नहीं है वो लोग, विश्वामित्र मुनि या अन्य मुनि जो भी मुनि है वैसे जो सामान्य मुनि होते हैं उनके जैसे नहीं है, वो महान भक्त है नारद मुनि, तो वो स्थितधीर मुनि है। वो सामान्य मुनि के वो वर्णन किया गया है, वो लोग क्या करते रहते हैं, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्नो नाशाव ऋषिर्यस्य नाचाव ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम, तो एक दूसरों के साथ वो वाद विवाद में लगे रहते हैं, अपना अपना मन भिन्न मत को प्रस्तुत करने में ही लगे रहते हैं। ऐसे इतिहास में बहुत सारे ऐसे दार्शनिक लोग हुए ना, वो अपना अपना अलग मन मत को स्थापित करते जाते हैं, अरिस्टोटल आ गया, सोक्रेटिस आ गया, ऐसे यू नो गैलीलियो आ गया, सब अलग अलग प्रकार के लोग अपना अपना मत को डालते रहते हैं। लेकिन वो स्थितधीर मुनि रहे, तो स्थितधीर मुनि कौन होते हैं, जो महाजन है, जो 12 महाजन है वो सब स्थितधीर मुनि, ठीक है। क्योंकि उस श्लोक के अंत में क्या होता है, महाजन ये ना गता सपनता, क्योंकि वो स्थितधीर मुनि है। 12 महाजन कौन कौन है, 12 महाजन स्वयंभू नारदा शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो भीष्मो जनको बलिर्वैया सकीर्वयम, हर एक लाइन में तीन तीन मुनियों का नाम दिया गया, वो स्थितधीर मुनि है। तो अगला श्लोक लेंगे, यह सर्वत्र ना विस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्ति होने पर उसे घृणा रहता करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। पहले भगवान ने बोला ना तो कि आप दोनों सुकृत दुष्कृत दोनों से मुक्त हो जाओ, ऐसे बोलते, तो ऐसे ये व्यक्ति दोनों सुकृत और दुष्कृत से मुक्त होते हैं, भौतिक जगत के जो अच्छे और बुरे जो फल है उससे मुक्त हो जाता है, द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, शुभ शुभ अभिनंदन और द्वेष से भी वो नहीं, कोई कोई लोग आपको निंदा करेंगे, कोई कोई लोग आपका गुणगान करेंगे, उससे क्या लेना देना है ना, भौतिक जगत में कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे अपहिवल्स हमेशा रहते हैं। इससे इन द्वंद्वों से वो मुक्त रहते हैं, उसको समाधि कहते हैं। क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, कृष्ण भावनामृत वो सर्व मंगलमय है। वो तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं ना, ये कृष्ण भावनामृत का एक लक्षण है शुभदा, वो सर्व मंगलमय है। वो तो यहाँ पर रुकेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे लोग उठ के खड़े हो रहे हैं, पहले के सभी लोग उठ के जा रहे। और कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? महाभारत से मतलब महाभारत युद्ध से पहले क्योंकि इसलिए हमने उसको चर्चा किया ना 16वें श्लोक में, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज को राजा क्यों संबोधित? क्योंकि वो राजस्व यज्ञ किया था उन्होंने, तब दुर्योधन वगैरह थे ना राजस्व यज्ञ में। दुर्योधन वो सभी लोग प्रसन्न हुए उस यज्ञ से, सिर्फ दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ, उसका अपमान भी हो गया वहां पर ना, है ना, पता है ना, और उसका अपमान भी हो गया। वो पानी को जल समझा, जल को पानी समझा, गिर गया, और ये द्रौपदी वगैरह हंस ली हो, इसलिए बहुत ईर्ष्यालु हो गया वो। और युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य को देखकर बहुत ईर्ष्यालु हो गया वो। बहुत पहले हुआ था वो, वनवास जाने से पहले ही हुआ था, या वनवास के बाद? वनवास जाने से पहले हुआ था, वनवास जाने से पहले हुआ था, है ना। अभी युद्ध के बाद तो दुर्योधन वगैरह सब मर गए, वो कहाँ पर थे राजस्व से कृपा से। युद्ध के बाद अन्य यज्ञ भी किया उन्होंने, अश्वमेध यज्ञ वगैरह किया उन्होंने, लेकिन राजस्व से कृपा तो पहले हुआ था। और कुछ तीन वेद जो कर्मकांड जो है वो घना जंगल के समान है, जो हम लोगों ने पहले बोला है ना ऋग्वेद यजुरा और सामवेद, क्योंकि वहां पर कर्म कांड के बारे में वो मोह कलिल मोह का घना जंगल भगवान बोल रहे हैं। कर्म कांड मतलब मोह का घना जंगल, उससे जब मुक्त हो जाओगे उससे तब आप क्या हो जाएंगे, सभी से इनडिफरेंट हो जाओगे सभी कर्मों से। कितना समय हुआ अभी? वो मैंने सोचा 2 बज गए करके। ठीक है ठीक है, आप लोग तैयार है तो हम भी तैयार। ठीक है, और कोई प्रश्न है? फिर उस प्रश्न के बाद और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पूछ सकते हैं अभी भी, क्योंकि थोड़ा प्रश्न होते हैं। या वैसे बहुत सारे हैं, हाँ, योगक्षेम वहाँ में हम LIC भी दे होता है, हाँ क्या है, बहुत सारे पॉलिटिशियन भी भगवद्गीता का श्लोक बोलते हैं, उल्लेख करते हैं, जरूरी नहीं कि वो इसका पालन। दे वांट टू पुट सम स्पाइस इन देयर लेक्चर्स, कुछ मसाला डालना चाहते हैं वो लोग, ये इसको मसाला समझते हैं वो लोग, मूर्ख लोग। वो सिर्फ बहुत सारा ऐसे इंश्योरेंस कंपनी है, कोई इंश्योरेंस दे सकता है क्या आपका मृत्यु नहीं होगा? अश्योरेंस दे सकता है ऐसे इंश्योरेंस कंपनी, अश्योरेंस दे सकता है क्या आपका मृत्यु होगा नहीं होगा करके? ऐसा दे सकते हैं क्या? नहीं ना, कुछ लिखने से बोलने से कुछ होता है क्या? और कुछ तो अगला श्लोक, यदा संहरते चाहं कुर्मोंगानि सर्वशः इंद्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से सींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। तो ये कूर्म अपने खोल के भीतर, उसके ऊपर ऐसा एक लेयर होता है, बहुत ही सदृढ़ रहता है। ऐसे बोलते हैं, बोला जाता है, वो ट्रक भी उसके ऊपर चला गया तो भी उसको कुछ नहीं होता ऐसे। एनीवे, ये कूर्म है, कछुआ है, लेकिन हमारा यहाँ पर उसका संदर्भ नहीं है। वो कैसे, जब उसको समझ में आ जाता है कि कोई डेंजर है, तो तुरंत ही वो अपने हाथ पांव को अंदर ले लेता है और उसके रक्षण में हो जाता है। कोई भी, क्योंकि जनरली कछुआ क्या होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, कोई आके उसके ऊपर गाड़ी चलाए ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो अंदर ले लेता है तो उसके ऊपर भी गाड़ी चला तो भी कुछ नहीं होता है। ऐसे जब भी कतरा रहता है तो उसको अंदर ले लेता है। तो इससे ये जो भगवान इस उदाहरण को देकर कैसे अपने इंद्रियों को वो किन में नहीं लगाता है और कैसे वो अपने आप को स्थित करता है, उसके बारे में भगवान बोल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है ना, वो किम आसीत व्रजेत किम आसीत। तीसरा प्रश्न का आधा भाग यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो कैसे स्थित होते हैं वो, इस योग में कैसे स्थित होते हैं वो, क्योंकि वो इंद्रियों को जब खतरा है तो अपने आप अंदर ले लेते हैं, तो इस तरह वो योग में स्थित रहते हैं या समाधि में स्थित रहते हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो हमें इसलिए, जब इंद्रिय वस्तुओं के हमेशा, आप जानते हैं ना कौन कौन से पांच इंद्रिय वस्तु हैं, बताइए पांच इंद्रिया कौन कौन से है और उनके इंद्रिय वस्तु कौन कौन से है। आंख है, नेत्र है, कान है, नासिकाएं हैं, जिह्वा है और त्वचा है। और ये सभी कैसे इंद्रिय विषयों के पीछे पड़े रहते हैं, बताइए। नेत्र रूप के पीछे पड़े रहता है, खान शब्द के पीछे पड़े रहता है, जीवा रस के पीछे पड़े रहता है, नासिकाएं सुगंध के पीछे पड़े रहते हैं, त्वचा स्पर्श से पीछे पड़े रहते हैं। तो सभी लोग ऐसे पीछे पड़े रहते हैं। तो जब युवक रहता है, युवक युवती का सुंदर रूप देखना चाहता है और उसका शब्द सुनना चाहता है, और उसके सुगंधित शरीर को सूंघना चाहता है, वास्तव में सब दुर्गंध ही रहता है, सब वो सब परफ्यूम लगाते हैं ना, और जो वो पकाती है उसको आस्वादन करना चाहता है और उसके शरीर को छूना चाहता है, ऐसे ये सब इंद्रिय विषय उनके पीछे पड़े रहते हैं, इंद्रियां। तो जो ऐसे आत्मा में स्थित व्यक्ति या समाधि में स्थित व्यक्ति, वो जब भी ऐसे हमेशा ये इंद्रिय विषय है वो आक्रमण करते रहते हैं इंद्रियों के ऊपर, है ना। जब वो खतरा आ जाता है, इंद्रिय विषयों के आक्रमण आ जाता है, तो वो अंदर ले लेता है। इसका अर्थ क्या होता है, ऐसे आप जा रहे हो, ऐसा कोई सुंदर वस्तु को देख लिया आपने, ऐसे मन उसको फिर से अनुमति नहीं देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। तो ऐसे आत्म साक्षात्कार व्यक्ति उसको हटा देता है, दूसरा चांस दे दिया, खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर ध्यान शुरू हो जाएगा। बाद में भगवान वर्णन करेंगे, ध्यायतो तो विषयाम तुम सो संगस्तेषु जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। ठीक है, उसको चांस नहीं देना चाहिए। ऐसे अलग अलग वहाँ पर चित्र भी दर्शाते हैं वो लोग, बाहर जाते हैं आपको ये सब चीज़ दिखाई देंगे, तो उसके ऊपर ध्यान शुरू होगा, कंटेम्पलेशन। और हमारा मन कैसे होता है, एक वो कैमरा के समान है, वो ऐसे फ्लैश थोड़ा सा फ्लैश कर देता है, यहाँ पर देख लिया बस वो चित्र वहाँ पर आ गया मन में। तो ऐसे इंद्रिय विषय इंद्रियों के ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होता है वो आत्मा में आनंद लेता है, समाधि में है, हमेशा भगवान की सेवा में लगा है, तो इससे वो इंद्रियों को अंदर ले लेता है, उसको उनमें लगाता नहीं है, इंद्रिय विषयों में वो यार्थ है। यदा संहरते चायम कुर्मोंगानी व सर्वस्य इंद्रियाणिन्द्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा। तो हम लोगों ने चर्चा किया इंद्रिय भोग सुख क्या है, ये इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के बीच में जब संसर्ग होता है तो थोड़ा रुचि वहाँ पर जागृत हो जाता है, थोड़ा कुछ रस जागृत हो जाता है, उसको इंद्रिय तृप्ति कहते हैं, इंद्रिय भोग कहते हैं। बाद में भगवान उसको वर्णन कर रहे, यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नहीं होते, तो उसको कहते हैं। और भागवत में वर्णन आता है विशेष करके गृहस्थों को, वो क्या है जो ब्रह्मचारी है तो वो हमेशा सेवा में रत रखे, वो ऐसे इंद्रियों को विषयों से वो खींच लेता है। और गृहस्थ क्या करते हैं, उनको ऐसे एक आक्रमण जो होता है इंद्रिय विषयों का, उससे रक्षा करने के लिए जो दुर्गा देवी रहती है उनका दुर्ग को रक्षा करने के लिए, ये शरीर को एक दुर्ग से तुलना की गई, और पत्नी क्या होती है उसको रक्षा करते हैं, वो आनंद प्रदान करते हैं नहीं तो क्या हो जाएगा, वो व्यभिचार कर सकता है ना, बाहर जा सकता है वो इंद्रिय विषयों के आक्रमण से। इसलिए स्त्री को क्या है फोर्ट्रेस ऑफ द बॉडी कहा गया है, ये शरीर का ये जो किला है उसको रक्षा करने वाली बताया गया है। तो वो लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी लोग कैसे करना चाहे, वो भगवान की सेवा में लगा के वो हमेशा, वो लोग भी जागरूक रहना चाहे, वो भी वो गृहस्थ जीवन में ही इंद्रिय विषय उनको आक्रमण कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए बोला जाता है ना, वो व्यक्ति जैसे बवंडर जब इंद्रिय विषय आक्रमण करते हैं, जब बवंडर आ जाता है तो दूर उड़ जाता है और आंख बंद हो जाते हैं, है ना। वैसे हमारा बुद्धि है क्या बंद हो जाते हैं, ये जो काम का काम वासना का जो बवंडर हो जो आक्रमण कर देता है तो बुद्धि नष्ट हो जाता है, बुद्धि नष्ट होने से उसके पत्नी से के प्रति आकर्षित हो जाता है वो, तो ऐसे होता है। तो हमें कूर्म की तरह होना चाहिए, वो लोग गृहस्थ लोग क्या करेंगे, वो लोग आश्रय वो किला को रक्षा करने वाले को आश्रय ग्रहण करेंगे ठीक है, इसके कारण उनको बहुत सारे बंधन और दुख को यातनाओं को सहन करना पड़ता है। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के कहने पर चलते हैं। सो व्हाट इज द एडवांस टेस्ट ऑफ एडवांसमेंट, कौन प्रगतिशील योगी है या कौन प्रगतिशील भक्त है, अपनी इच्छा के अनुसार वो इंद्रियों को समेट लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं अधिकांश लोग इस जगत में क्या है, इंद्रियों के दास रहते हैं। तो आदांत गोभीर विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानां, बार 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 उसी को चर्वित करते हुए करते रहते हो जीवन आप जीवन। हम पहले जीवन में ये सब मैथुन सुख, ये सब सुख, स्त्रियों का संग करने का सुख सब कर चुके हैं, फिर से हम उसी को चखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पुनश्चर्वित चर्वणानां, ये आदांत गो का लक्षण है, इंद्रियों का दास का लक्षण। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं हमें गोस्वामी बनना चाहिए, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वं मितिम्यां पृथ्वीं सशिष्यः। सो जब तक गोस्वामी नहीं बनेंगे तब तक भक्ति में आगे प्रगति नहीं करेंगे। वो पहला शिक्षा है, भक्ति में उपदेश है। आदान तक वो कभी यू नो मतीर्ण कृष्णे परतो सुतो वा मितो विपदेत ग्रह व्रतानाम। जो आदान तक वो भी विशताम थमिष्यम पुनः पुनः शर्वित चर्वणानाम। जो आदान तक वो है इंद्रियों का दास हो वो स्वयं के प्रयास से या दूसरों की सहायता से कभी कृष्णमती नहीं बन सकता, कृष्ण भावना भावित नहीं बन सकता। तो इसलिए यह पहला शिक्षा है कि पहला चीज क्या है, गोस्वामी बनना चाहिए। ये कृष्ण भावनामृत ऐसे आरंभ होता है, समझ में आ गया? कृष्ण भावनामृत कैसे आरंभ होता है, गोस्वामी के स्तर से आना आरंभ होता है, नहीं तो कृष्ण भावनामृत आरंभ नहीं होता है। आप आरंभ करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, वो सौभाग्य जो है दुर्भाग्य बन जाएगा, क्योंकि हम लोग अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रहण जनसंघस्य लौलंश उसमें लग जाएंगे, है ना? तो ये आरंभ वहां से होता है। इसलिए योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति, ये तीनों के बारे में बताया, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी या भक्ति योगी, तीनों को उनको ट्रांसेंडेंटलिस्ट आध्यात्मवादी कहते हैं ना। तो तीनों का क्या मापदंड है, वो प्रगति किया है, कैसे वो अपने इंद्रियों को काबू में करते हैं, उसके अनुसार यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सांपों से की गई। ओ मैंने वो श्लोक वो कहते हैं चैतन्य चंद्रामृत में नहीं, वो चाहिए मुझे श्लोक, मैंने वो श्लोक बुक लेने लेके आने के लिए बोल दिया, मेरा श्लोक बुक है वहाँ पर, वो श्लोक भूल गया। त्रिदशपुर आकाश पुष्पा देते क्या है, दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली, क्योंकि वो श्लोक महत्व विश्वम तू न सुखाय थे, कैवल्यम नरकायते त्रिदश पुराकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंश्रायते विश्वं पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्य कीटायते यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवताम वैभववताम तं गौरमेवस्तुमः। तो मैं उस गौरांग महाप्रभु को गुणगान करता हूँ जिनके कृपा कटाक्ष के कारण, सिर्फ उनके कृपा के कटाक्ष के कारण, उनके दृष्टिपात के कारण क्या हो जाता है, कैवल्य नरक के समान हो जाता है। कैवल्य का अर्थ है भगवान में एकाकार होना। त्रिदशपुर आकाश पुष्पाए थे, जो जैमिनी वगैरह जो हो ऊंचा लोक में जाना चाहते हैं कर्म कांड करके, वो क्या है, वो आकाश में पुष्प के समान लगता है। सिर्फ वो पिछले मनोगतान हम लोग चर्चा किया ना, वास्तविकता नहीं है वो आकाश में ऐसे कोई पुष्प होता है क्या, सिर्फ वो कविता में जो लिखा गया है, वैसे कवियों ने लिखा गया अपने कल्पना के द्वारा, वास्तविक नहीं है। कवि लोग बहुत सारा चीज़ लिखते हैं लेकिन वो वास्तविक नहीं होता है। वैसे ही भौतिक सुख या ऊंचे लोक में जाके सुख प्राप्त करने का जो सुख है, जो कर्म मुखांडी लोग या कर्म मीमांसक लोग प्राप्त करना चाहते हैं, वो ये आकाश में पुष्प के समान है, या घोड़ा डिम्बा ऐसे भी करते हैं, एक घोड़े के अंडे के समान। घोड़े का अंडा होता है कभी देखा आपने? नहीं होता है। घोड़े के अंडे के समान, तो इसका अर्थ है वास्तविक नहीं है, वो सिर्फ कल्पना से कुछ बोल दिया है। दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दमशायत, ये हमारे लिए इस संबंध संदर्भ में। तो जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति, उसके इंद्रिया कैसे होते हैं? वास्तव में इंद्रिया एक सर्प के समान है। क्यों सर्प के समान तुलना किया गया उनको? सर्प के समान क्यों तुलना किया गया? क्योंकि इंद्र तृप्ति में लग के हमें बार बार यहाँ पर जन्म लेने के बाध्य करते हैं। सर्प वो काट देता है तो मृत्यु हो जाता है ना, बार बार ये मृत्यु। सर्प काटने से सिर्फ एक ही बार मृत्यु होता है, ये इंद्रियों के सर्प जो काटने से बार बार जन्म मृत्यु होता है हमारा। तो इसलिए दुर्दांत इंद्रिय सर्प काल पटली ऐसे बोलते हैं। लेकिन प्रोत्काट दमशायते, भक्ति में लगने के बाद या चैतन्य महाप्रभु के कृपा कटाक्ष होने के बाद, वो ऐसे सांप, इंद्रिया तो रहेंगे, इंद्रियों को हम लोग इंद्रियों को अंदर नहीं लेंगे, हम लोग इंद्रिया रहेंगे। जैसे जो कूर्म है वो इंद्रियों को अंदर लेता है, इसका अर्थ नहीं है कि वो इंद्रिया नहीं रहेंगे उसका, इसका अर्थ होता है उसके जो विषीली जो वो दांत है उस वो निकल जाता है। तो ये भक्ति में भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाने का फल होता है। विश्वम पूर्ण सुखायते, तब यह भौतिक जगत पूर्ण सुखमय बन जाता है। जो अन्य लोगों के लिए क्या होता है, भौतिकवादी लोगों के लिए ये बहुत दुख का क्या है, लोग मुझे कोई समझता नहीं है, कोई मुझे सुनता नहीं है, कितना क्रूर लोग है ये सब, ऐसे है ना। विश्वम पूर्ण विधि महेंद्रादिश्च कीटायते, विधि मतलब ब्रह्मा जी, महेंद्र शिव जी और इंद्र आदि के जो स्थान है वो क्या है? कीट के समान है, कीड़े के समान है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के कृपा कटाक्ष अच्छा है ना, तो उनको प्रार्थना करना चाहिए। प्रबोधानंद सरस्वती के चैतन्य चंद्रामृत पांचवा श्लोक। तो योगी या भक्त को इन सर्पों के वश में करने के लिए एक सफेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। हम लोगों को सफेरे के समान होना चाहिए, यू नो स्नेक चार्मर। वह उन्हें एक, तो प्रभुपाद भगवान कुर्म का उदाहरण दे रहे हैं, प्रभुपाद जी सफेरे का उदाहरण दे रहे हैं। वह उन्हें कभी भी कार्य करने में छूट नहीं देता, शास्त्रों के उनके आदेश है, उनमें से कुछ करो कुछ ना करो से संबद्ध है। तब जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग में पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है, वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उन्हें प्रकट करता है। तो जब चाहे वो बाहर करता है, जब चाहे उसको अंदर लेता है। ये महत्वपूर्ण चीज इस श्लोक में हमें समझना चाहिए। प्रगतिशील योगी जब वो चाहे, जरूरत है वो इंद्रियों को उपयोग करता है, जब नहीं चाहिए उसको उपयोग नहीं करता है। तो गृहस्थ भी ऐसे ही होना चाहिए, जब भी बच्चा को जन्म लेना चाहिए तभी उसको इंद्रियों को उपयोग करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी तो प्रश्न ही नहीं। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपने इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए, अपने इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखने कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेट रखता है। तो अगला श्लोक, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसो यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहदार जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। निराहारस्य मतलब क्या है, ये विषय ऐसे सेक नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बताया ये विचलित मन का लक्षण है। ऐसे बोलते बहुत सारा चीज ऐसे बोलते हैं, हमें दरवाजा जोर से बंद नहीं करना चाहिए, खोलना नहीं चाहिए ये सब चीज। निराहारस्य देहिनः क्या होता है, निराहार मतलब प्रसाद नहीं लेना निराहार होता है। जो इंद्रिय विषय क्या है, इंद्रियों के लिए अन्न है, तो उनको नहीं देना निराहार है। लेकिन निराहार करने से ये योग पद्धति में भी एक 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 स्तर है ना, वो प्रत्याहार, यम नियम धारण ध्यान प्रत्याहार, सो ऐसे होता है। सो प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि योग समाधि ऐसे अष्ट आठ स्तर हो, आठ स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप क्या होता है, तो प्रत्याहार विषयों को नहीं प्रदान करना, ये इंद्रियों को विषयों से उनको दूर रखना, उनको बंद कर देना। लेकिन सिर्फ बंद करने से क्या विषय वासना को प्राप्त करने की इच्छा से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। लेकिन रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा, लेकिन वो इंद्रियों को एक ऊंचा रस प्राप्त हो गया तो क्या हो जाता है, ये इंद्रियों इंद्रिय भोग करने के रस से जो निचले रस है उसको तो वो त्याग देते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। प्रभुपाद जी भी अष्टांग योग के बारे में यहाँ पर बदल रहे, देखिए। तो कृष्ण भावनामृत का जो रस है क्या है, वो ऊंचा रस है। जैसे हम लोग भगवान को सुंदर रूप को देखते हैं, ऐसे भौतिक रूपों की देखने का इच्छा चला जाता है। हर रोज आप अच्छी तरह से दर्शन लेंगे तो भौतिक जगत के रूपों से आकर्षित नहीं हो जाएंगे। हमें अपने नेत्रों को भगवान की सेवा में दर्शन लेने में लगाना चाहिए। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, कोई आप भौतिक जगत के आनंद को लेना चाहते हैं तो भगवान को देखो मत, ऐसे बोलते। वो ऐसा लगता है कि वो क्या कह रहे, वो अपप्रचार कर रहे हैं, वो भगवान को मत देखो ऐसे बोल रहे हैं, इंद्रिय को वास्तव में भगवान को गुणगान कर रहे हैं। तो ऐसे उपमात्मक दृष्टिकोण से उसको वर्णन कर, स्मेराम बंगित त्रय परिचितम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्त्यादर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेन गोविंदाख्यम हरितनुमित केशि तीर्थोपकंठे मा प्रेक्षिष्टस्तव यदि सके बंधु संगो स्थिरंगः। वो एक गोपी दूसरे गोपी को बोल रही है, आप अपने परिवार अपने प्रेमी और समाज में आनंद लेना चाहते हो तो उस गोविंद को मत देखो जो वंशी वट के तट पर खड़े है और पीतांबर पहन के उज्ज्वल वो चंद्रिका चंद्रमा के, वो पहले ही बहुत उज्ज्वल है, बहुत सुंदर है और चंद्रमा के प्रकाश से और उज्ज्वलित दिख रहे हैं। और बंगी त्रय, त्रय मतलब थ्रीफोल्ड बेंडिंग फॉर्म, ऐसे खड़े हैं वो अपने बांसुरी बजाते हुए, उनको देखने के लिए मत जाओ ऐसे बोल रहे। तो इससे उससे क्या हो जाएगा, आसक्ति है वो चला जाएगा, अपना परिवार अपने ये सब, ये भगवान को दर्शन करने का फल है ये, या विग्रह सेवा करने का फल है। तो ये श्लोक वो रूप गोस्वामी ने कंपोज किया और बताया भक्ति रसामृत सिंध में। तो ऊंचा रस मिल जाएगा और निचला रस चला जाएगा। सो प्रसाद आस्वादन करेंगे तो ऐसा कुछ वो गंदा गंदा चीज लोग खाते हैं उससे आपको वॉमिटिंग आ जाएगी। सभी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, भगवान को अर्पित हुआ हुआ फूल वगैरह हम लोग सूंघ सकते हैं, प्रसाद आस्वादन कर सकते हैं, खान हम लोग अच्छा ये दर्शन शास्त्र सुन सकते हैं। क्या कितना कब छोड़ेंगे ये तो सुनाते जा रहे ऐसे। ऐसे तो नहीं हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है कि ना सुनने के लिए। सो ये दर्शन शास्त्र सुनने के लिए लगाना चाहिए, या भगवान के जो संगीत है भगवान के सेवा में उसको सुनते हैं, तो ऐसे हम लोग ऊंचा रस प्राप्त करके निचला रस छोड़ देते। रसवर्जम रसोपस्य, नहीं तो एक व्यक्ति अभी भी रस है वो भौतिक रस को आस्वादन करने के लिए अभी भी उसको टेस्ट है, तो वो क्या हो जाता है, मिथ्याचारी हो जाता है। अगले अध्याय में आरंभ में उसको वर्णन किया जाता है। लेकिन अंतर है भक्ति रस में, भक्ति रसामृत सिंधु श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं। भौतिक रस क्या है, वो चपल सुख है, चपल सुख, और भोग और त्याग में वो एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होता रहता है, तो ये भौतिक रस है। भौतिक रस में लोग त्रस्त हो जाते हैं क्योंकि वो चपल सुख है और उसको त्याग देते हैं, फिर त्यागने के बाद कुछ समय के बाद फिर से उससे आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे भोग और त्याग की चक्र में पड़े रहते हैं। लेकिन भक्ति रस जो है वो अमृत है, वो कभी खत्म नहीं होता, वो चपल सुख नहीं है, वो कभी खत्म नहीं रहता है, और ये सिंधु के समान एक सागर के समान है वो भक्ति रसामृत सिंधु है। उसको चखने के बाद ये भौतिक रस से हम लोग मुक्त हो जाते, वो कुछ आनंद नहीं रहता उसको। आज हम वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, वो पढ़ के हमें ऐसा लग रहा है क्या है, इधर उधर से कुछ कुछ लेके वो न्यूज़पेपर में डाल के उसको चला रहा है। कोई लड़का कोई लड़की से भाग गया और कोई किसी को कंप्लेंट दिया पुलिस को, ये क्या बड़ा न्यूज़ है क्या है। मेरठ के पास कोई ऐसा न्यूज़पेपर में उसका एक कॉलम है, कुछ ना कुछ डाल के वो लोग क्या है न्यूज़पेपर चला रहा है, ये लोग उसको पढ़ने में आनंद लेता है, क्या है उसमें। इतिहास में कितने सारे लोग वो लड़का लड़की भाग गया, हर रोज हम लोग देखता है वो न्यूज़पेपर में डालने का क्या जरूरत है उसे। सब ऐसे रस, भौतिक रस क्या है वो, क्या उसको क्या बोलते हैं, स्टेल क्या बोलते हैं, बासी रस, ये सब न्यूज़ क्या है, बासी है सब। उसमें क्या आनंद आता है लोगों को, वो देख के मुझे आश्चर्य हो। ऐसे तो कुछ इधर उधर का कुछ कुछ न्यूज कुछ बोल के चलाता है लोग, अच्छा है भगवद्गीता भागवत पढ़ो, ये सब क्या है। गोलोक वृंदावन के जो समाचार है वो सुनो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया ना, हम लोग हर रोज ऐसे समाचार दे सकते हैं आपको, ऐसे बोलते गोलोक वृंदावन से, वो बासी नहीं होता है, वो कभी बासी नहीं होता, या अगला दिन बासी हो जाता है और हमेशा बासी ही रहता है, वो लोग सोचते हैं उसको आकर्षक चीज, क्योंकि उनको कुछ ऐसा ऊंचा चीज पता ही नहीं है ये छोड़कर। और वो श्लोक भी मैं उल्लेख कर रहा था ना, जो भौतिक सुख भोग की इच्छा से हम लोग भक्ति में रुचि नहीं आता है, जब हम हरिनाम में जो रुचि नहीं आता है, जब वो अज्ञान कम हो जाता है तो वो क्या है, वहां पर रूप गोस्वामी क्या उदाहरण दे रहे, वो क्या बोलते हैं उसको, दैट रोग, व्हाट इज दैट, पीलिया का उदाहरण दे रहे। पीलिया से मुक्त होने के लिए क्या है, तो हमें ऐसे स्वीट लेने, पीलिया होते हैं जब ऐसे शुगर कैंडी, ऐसे शक्कर लिया तो शक्कर भी कड़वा लगता है, लेकिन शक्कर खाते रहना चाहिए, उससे पीलिया से हम लोग मुक्त हो जाए, फिर असली स्वाद है वो प्राप्त हो जाता है। आरंभ में ऐसे हो सकता है कि आरंभ में भी प्रयास है, भक्ति में बहुत आनंद मिलता है, थोड़ा समय के बाद थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है आनंद प्राप्त करने के लिए भक्ति में, तो उसके लिए तो रूप गोस्वामी कहते हैं करते रहो, तो जब अज्ञान खत्म हो जाएगा, भौतिक भोग का आकर्षण खत्म हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, अपने आप आनंद हो जाएगा। बीच बीच में ऐसे आपको परीक्षा भी आएंगे, ऐसे जो ये क्या है विषय वस्तु आक्रमण करेंगे तब आपको शक्तिशाली होना चाहिए, सफेद रंग की तरह आपको शक्तिशाली होना चाहिए। ऊंचा रस का आस्वादन किया तो हम लोग उससे उसको सफेरा की तरह नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। यततोऽपि कौन्तेयः पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हे अर्जुन, इंद्रिया इतना प्रबल तथा वेगवान है कि वे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेते हैं जो उन्हें वश करने के प्रयत्न कर रहा है। बहुत सारे लोग प्रयत्न कर रहे थे ना, विश्वामित्र प्रयास कर रहा था, वो मेनका के जो पायल के आवाज है उसको सुन के आंख खोल दिया और उसका पतन हो गया है ना। वो प्रयास कर रहा था इंद्रियों के ऊपर निग्रह करने के लिए, लेकिन वो उसका पतन हो गया क्योंकि इंद्रिया बहुत ही प्रबल है। उसका नतीजा क्या हो गया, शकुंतला का जन्म हुआ है ना। शकुंतला या कौन है वो, शकुंतला है ना, शकुंतला, शकुंतला पक्षी बोलते हैं। तो ऐसे उनका जन्म हो गया। और शौबरी मुनि तो ऐसे सोचा, मैं इंद्रिय विषयों से आकर्षित ना हो करके वो पानी में जाके प्रयास तपस्या करने लगा था। और पानी में वो क्या है, मछली, वो मछली दो मछली संभव करते हुए देखा और उससे वो प्रभावित होकर 50 स्त्रियों के साथ विवाहित कर लिया। महाराज मंद्राता के पास आ गया। महाराज मंद्राता ने पूछा, उन्होंने बताया वो एक वो उनको इंसल्ट के दृष्टिकोण से, क्योंकि पानी में रह के उसका शरीर क्या हो गया था, पूरा बासी हो गया था पूरा। वो सब पानी में आप जला ज़्यादा समय लगने से क्या हो जाता है, वो ये हो जाता है ना, डिके हो जाता है, गल जाता है ना, ऐसे उसका पूरा रूप गला हुआ था। तो उन्होंने, आप मेरे 50 पुत्रियां हैं, कोई आपसे विवाह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसे उसको भेज दिया उसको। और 50 ने उसको नकार दिया। हाँ, उसको समझ में आ गया। वो लोगों ने बताया, जाके अपने मुंह को आईना में देखो, ऐसे बोल दिया उसको। लेकिन उसके खाम का जो प्रभाव इतना शक्तिशाली था, जितना वो तपस्या करके योग शक्ति प्राप्त किया था, उससे अपने आप को सुंदर रूप में परिवर्तित कर दिया उसको और 50 से विवाह करके चला गया। बाद में भोग करने के बाद उसने उसको तब होश आ गया और देखा मैं कहाँ क्या करने गया और कहाँ पहुंच गया था। वो ऐसे प्रहार होगा ना, विषयों का प्रहार आ जाएगा और इंद्रियां बहुत प्रबल है यहाँ पर। यतो अभी कौनते या पुरुष इंद्रियादि प्रमातिनी, प्रमातिनी मतलब वो पागल करके यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत ही शक्तिशाली है, उत्तेजित करने वाले हैं प्रमातिनी मतलब। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया, ययाति महाराज ने बताया कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि करिष्यति। तो इंद्रिय इतना प्रबल है और शक्तिशाली है कि एक व्यक्ति को अपने माँ बहन स्वस्त मात्रा स्वस्त्रा और दुहित्रा वा पुत्री के साथ भी अकेले नहीं रहना चाहिए, ऐसे कहते हैं। या एक ही आसन पर नहीं बैठना चाहिए बोलते हो। आजकल तो ये सब नियम पालन नहीं होता है, पहले जमाने में ऐसे नहीं होता था। एक परिवार में भी माताओं के और पुरुषों के बीच में उतना मिलना जुलना नहीं होता था। कोई वो बहन हो, कौन हो, कोई भी हो, उतना ज़्यादा मिलना जुलना होता था। स्त्री लोग अलग रहते थे और पुरुष लोग अलग रहते थे। तो आजकल इसलिए बहुत सारे पाप होता है, बहुत सारे, हम लोग कल्पना भी नहीं करेंगे ऐसा चीज करते हैं लोग। यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, ये तो ये श्लोक बहुत सारे पतित लोगों के बारे में बताया गया, कौन माता सुत्रा द्वित्रा सा के साथ ऐसे कर सकता है। लेकिन आगे बताते हैं, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि करिष्यति। इंद्रिया इतना बलवान है, विद्वांस के मन को भी हरण करके चले जाते हैं। विद्वान व्यक्ति, विद्वान मतलब जो ये सभी विद्याओं को समझ लिया, हो गया ना, वो अजामिल क्या कौन था, श्रुत संपन्न, वो वर्णन आता है वहां पर। श्रुत संपन्न मतलब सभी वेदों को उन्होंने अध्ययन किया था, सभी अच्छे गुण थे आए अजामिल में। एक बार ऐसे स्त्री पुरुष को देख लिया, उसके इंद्रियां उसको हरण करके चले गए। वो हालांकि वो प्रयास कर रहा था, वो जो वेदों के जो वाक्य है, वो शास्त्रों के जो आदेश है, उपदेश है, वो सब स्मरण करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी हुआ नहीं। वो हरण करके इंद्रिया हरण कर, प्रभुपाद उस वहां पर तात्पर्य में लिखते हैं, वो उस समय वातावरण बहुत ही अच्छा था और अजामिल वो इतने अच्छे गुण थे उसके अंदर, अच्छा ब्राह्मण था, सही ब्राह्मण था वो। हाँ, उसको अच्छी तरह से प्रशिक्षण मिल गया था ब्रह्मचारी आश्रम में। तो ये सब होने के बाद भी एक बार उसने देख लिया और उसका स्थिति ऐसे हो गया, कितना पतन हो गया उसका, वो चोर बन गया, डकैत बन गया, सब कुछ बन गया वो स्त्री के कारण। तो इल व्यभिचार के कारण ऐसे हम लोग वृत्तियों में लग जाते हैं, चोर डकैत आजकल बहुत सोफिस्टिकेटेड ये ऐसे होते हैं वृत्ति, लोग बहुत सज्जन दिखते हैं, सूट बूट पहनते हैं, लेकिन ऐसे ही कर रहे हैं वो लोग, चोर डकैती ही कर रहे हैं। ये सब बैंक वगैरह क्या है, चोर डकैत है वो लोग। लोग मेहनत करते हैं वो लोग, वो इंटरेस्ट के रूप में उसको हरण करके लेके जाते हैं, वो पैसा प्रिंट करके करके देता है, लोन देता है, और ये लोग मेहनत करता है लोग उसके लिए। तो उसका क्या वैल्यू है वो प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, तो हरण करके विद्वान सब अपिकर्षति, प्रभुपाद लिखते हैं वहां पर कि तात्पर्य में उस समय एक युवक अजामिल का ये स्थिति बन गया। अभी के युवकों का क्या स्थिति होगा, सब जगह ऐसे दृश्य दिखाई देते। पहले ये सिनेमा देखते थे, पोर्नोग्राफी देखते थे, वो सब जगह अभी उपलब्ध है रास्ते के ऊपर, टेलीविजन में, सिनेमा में जो भी दिखाया जाता है वो सब उपलब्ध है। आजकल कुछ शेम नहीं है, कुछ शर्म नहीं, भरम नहीं है, सब स्त्री लड़के लड़कियां ऐसे घूमता है। ट्रेन में, बस में, या कॉलेज में, या रास्ते में, सब जगह आप देखिए तो यही करते रहते हो, ऐसा स्थिति। इंद्रिया प्रबल है, यततो अपि कौन्ते या पुरुषश्च विपश्चित, विपश्चित मतलब जो ज्ञानी है, जो प्रयास कर रहे हैं इंद्रियों के, जो विद्वान है उनको विपश्चित कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद वही उदाहरण दे रहे हैं ना विश्वामित्र का, लेकिन तद्विरुद्ध, उसके तद्विरुद्ध हम लोग देखेंगे जो कृष्ण भावनामृत में लगते हैं उनकी इंद्रियों को हरण करके नहीं जा सकते। इंद्रिया क्या हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में नया नया रस मिल जाता है। यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस दामन युद्धतम रंतुम आसित तद अवधि पत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्टि विनम छ। नया नया रस प्राप्त हो रहा है, ऐसे यमुनाचार्य बोल रहे। तो यमुनाचार्य पहले वो भी राजा थे, क्या हो रहा है उनके बीच में, बहुत चर्चा हो रहा है, सुनिए प्रभु जी। तो यमुनाचार्य भी बहुत राजा थे पहले जमाने में, वो जब भक्त बन गए वो भी बहुत राज भोग में सब लिप्त हो गए थे। जब भक्त बन गए तो उसको सोचते भी वो थूकते हैं वो, क्योंकि उनको यह नया नया रस प्राप्त होता है। नव नव रस दामन युद्धतम रंतुम आसित, तो ऐसे बोलते। तो फिर अभी अगले श्लोक में भी और इस श्लोक में अंत में भी वो प्रभुपाद वो अमरीश महाराज का भी उदाहरण दिया। तानि सर्वाणि संयम्या युक्त आसीत मत्परः वशेयस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। दानी सर्वाणी संयम में युक्त आसित, कैसे वो चलता है, वो प्रश्न पूछा था ना, कैसे वो अपने इंद्रियों को लगाते हैं, किन चीजों में वो लगाते हैं, वो युक्त है, इनके बारे में यहाँ पर बताया, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तो सभी इंद्रियों को नियंत्रण करके वो अपने इंद्रियों को मेरे सेवा में लगाते हैं, वो कृष्ण भावना भावित है। मत्पर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, वो कृष्ण भावना भावित है। मत्पर मतलब कृष्ण परायण, वासुदेव परायण, नारायण परायण, ऐसे शब्द आते हैं ना अलग अलग जगह पर, तो वो मत्पर कृष्ण भावना भावित होना पूरी तरह। तो वशी यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति इंद्रियों को आसानी से वश में कर देता है, उसका प्रज्ञा वो स्थित सिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बलदेव विद्याभूषण को उल्लेख करता है, मत पर शब्द का क्या अर्थ होता है, मत भक्ति प्रभाव सर्वेंद्रिय विजय, ऐसे बोलते हैं मेरे भक्ति के प्रभाव से क्या हो जाता है, सभी इंद्रियों के ऊपर वो जीत हासिल कर लेता है, ऐसे कहते हैं। अच्छा है ना बहुत। तो उसके लिए उदाहरण कौन है, अम्बरीश महाराज, वो इंद्रियों को से भगवान की सेवा में लगा के पूरी तरह से मन के ऊपर काबू कर लिया। सवै मन कृष्ण पदार विंदयोर्वाचां श्री वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सत्कतोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्रा स्पर्शांग संगमं ग्रामं च तत्सा तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्यारशनं तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दासेन तु काम काम्यया यतुत्तम श्लोक जनाश्रयारथी। राजा अम्बरीश ने अपने मन भगवान कृष्ण के चरण चरणारविंद पर स्थिर कर दिया। सवय मन कृष्ण पदारविंद योर, अपने वाणी भगवान के दाम की चर्चा करने में लगाया। वाचाम सी वैकुंठ गुणान वर्णन है, वैकुंठ के बारे में गुणान और कीर्तन करने के लिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं 15वें अध्याय के एक श्लोक तात्पर्य में होता नतत बास है, जहाँ पर भगवान के दाम का वर्णन आता है, उस वर्णन को सुनकर हमें आकर्षित होना चाहिए, ऐसे भगवान कहते हैं। तो ऐसे वैकुंठ का गुणान वर्णन हमें सुनना चाहिए और आकर्षित होना चाहिए। वाचाम सी वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मन श्रुतिम चकार अच्युत सत हरेर करो हरेर मंदिर मार्जनादेश, अपने कर कमलों को मंदिर को मार्जन करने के लिए लगाया उन्होंने। आप देखिए पूरा दुनिया का राजा है वो, ऐसे तुच्छता तुच्छ सेवा करते हैं। तो सेवा को कभी हमें तुच्छ नहीं मानना चाहिए। तो श्रुतिम चकार अच्युत और अपने कान को अच्युत कथा को सुनने में लगाया, अच्युत सत खतोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, और अपने आंखों को दर्शन करने के लिए अपने नेत्रों भगवान के स्वरूप को दर्शन करने के लिए अपने नेत्रों को लगाए, अपने शरीर को भक्त के शरीर को स्पर्श करने में स्पर्श तद्भृत्य गात्र स्पर्शांग संगमम। एक जगह पर प्रभुपाद बोलते हैं उसको, भक्त लोग साथ में बैठते हैं इसलिए उनका प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं, उनका अंग स्पर्श हो जाता है, ऐसे बोलते स्पर्शांग संगमम ग्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, अपनी जिह्वा को अर्पित उन्हें अर्पित तुलसी दलों को आस्वादन करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में। आजकल कार में जाते लोग ट्रेन में कार में प्लेन में जाते हैं, पहले जमाने में पादों को उपयोग करते थे, नहीं तो पाद का क्या होता है, फिर भी वहां पर जाने के बाद परिक्रमा कर सकते हैं। पाद सेवनम, नौ अंगों में एक अंग है पाद सेवनम। पाद सेवनम का अर्थ होता है भगवान की चरणों को सेवा करना, या दूसरा है अपने पांव को भगवान की सेवा में लगाना, इसका अर्थ है उन क्षेत्रों में जाने के लिए या परिक्रमा करने के लिए उपयोग करना। तो पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, शिर को भगवान के और नमस्कार करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो कामम च दासे न तु काम काम्य, अपने इच्छाओं को, भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया और इन गुणों के कारण भगवान में मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। तो यहाँ पर मत पर शब्द प्रभुपाद जी अनुवाद में रखते हैं उसको, ताकि यहाँ पर कैसे होता है मत पर शब्द का क्या होता है, अर्थ होता है सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम्य, सर्वाणि मतलब सभी। तो क्यों ये श्लोकों को प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं, यहाँ पर सर्वाणि शब्द आता है और मत पर शब्द आता है, सर्वाणि सभी इंद्रियों को उन्होंने लगाया। ऐसा नहीं कि एक इंद्रिया लगाया और दूसरा इंद्रिय नहीं लगाया। इसलिए क्यों हम लोग रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में एकांग भक्ति और बहुअंग भक्ति ऐसे वर्णन करते हैं। एकांग भक्ति तो मतलब जो नवविधा भक्ति है, नवविधा भक्ति में एक अंग भी पालन करेंगे तो हम लोग परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। वो उदाहरण भी देते हैं, जैसे श्रवण करके परीक्षित महाराज परिपूर्णता को प्राप्त किए, और कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी, और स्मरण कौन परिपूर्णता को प्राप्त किए, स्मरण करके बताइए, प्रहलाद महाराज, और श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम, पाद सेवन कौन परिपूर्णता प्राप्त किए, लक्ष्मी देवी हमेशा भगवान के पाद सेवन सेवा करती है, और वंदनम अक्रूर वो प्रार्थनाएं अर्पण किया उन्होंने सुंदर सुंदर, अर्चनम प्रथम महाराज अर्च विग्रह की सेवा किया उन्होंने, भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह को सेवा किया उन्होंने, और दास्यम का कौन परिपूर्णता प्राप्त किए, हनुमान जी, और सत्यम अर्जुन, और आत्मनिवेदनम बलि महाराज। ऐसे हर एक अंग को पालन, एक एक अंग को पालन करके परिपूर्णता प्राप्त किए। फिर रूप गोस्वामी बहुअंग भक्ति का वर्णन करते हैं। बहुअंग भक्ति का क्या अर्थ होता है, जो सभी अंगों को पालन करके परिपूर्णता प्राप्त की। कोई उसके लिए उदाहरण अम्बरीश महाराज, यहाँ पर वही वर्णन आता है सभी इंद्रियों को वो लगाए। तो हम लोग क्योंकि उतना शुद्ध नहीं है कि एक ही अंग को पालन करके परिपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए हम लोगों को आचार्यों ने बहुअंग भक्ति भी दिया है। हर सुबह से शाम तक आरती कीर्तन प्रसाद प्रसाद बनाना भगवान के लिए, ये सब चीज़ अंगों को हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, ऐसे हरिनाम जप करना, हरिनाम संकीर्तन करना, ये सभी अंगों को हमें आचार्यों ने बताया है करने के लिए अम्बरीश महाराज के पदचिन्हों को चलते हुए। तो तभी सभी इंद्रिया भगवान की सेवा में लग जाएंगे। थानी सर्वाणी संयम है, तब आसानी से भगवत भक्ति की प्रभाव से मत भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय, सभी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाता है। कौन सा है तात्पर्य में प्रभुपाद जी वो उदाहरण देते हैं ना, शिवा ब्रह्मा भी इससे प्रभु और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कुछ उदाहरण देते हैं। देखिए वो कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते। भगवान कृपया करके वहां पर बोलते हैं ना, तेषाम एवानुकम्पातम अहम अज्ञानजम तम नाशामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, ऐसे भगवान उनको जला देते उनके हृदय में रख के अनुभव उनकी कृपा से। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यकता बताता आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा चूंकि योग सूत्र पतंजलि का योग सूत्र है, ये योग सूत्र का अर्थ है पतंजलि ने जो लिखा है वो बताया है। तो वो भाई क्या करते हैं, शून्य के ऊपर, जैसे अभी भ्रमित कुमारी वगैरह वो लाइट के ऊपर, वो या बौद्ध धर्मी लोग वो शून्य के ऊपर ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन पतंजलि योग पद्धति क्या है, भगवान विष्णु के हृदय में स्थित भगवान विष्णु मूर्ति है उनके ऊपर ध्यान करना, उससे क्या हो जाता है, तो अज्ञान जो नाश हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाते हैं। तथाकथित योगी जो विष्णुपाद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं तो केवल मृग मरीचों की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, असली योग का यही उद्देश्य। तो क्या हुआ समय?
40।
तो और दो तीन श्लोक ले लेंगे, कोई प्रश्न तो नहीं है ना? समझ में आ गया? मद भक्ति प्रभाव है ना, सर्वेंद्रिय वगैरह, ठीक है। हमें ये श्लोक जब उल्लेख करते हैं प्रभुपाद, एक चीज हमें याद रखना चाहिए, वो श्लोक में और जो श्लोक यहाँ पर चर्चा में चल रहा है उसमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज होते हैं, वो ढूंढना चाहिए हमें। क्यों ये श्लोक उल्लेख कर रहे हैं आप? जैसे यहाँ पर सभी इंद्रियों के बारे में, स्थानी सर्वाणी संयम है, सभी इंद्रियों के बारे में, और सभी इंद्रियों को कहाँ पर लगाया गया है? अमरीश महाराज, इसलिए वो श्लोक उल्लेख कर रहे हैं। ऐसे सिमिलैरिटीज, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज लेकर श्लोक उल्लेख करते हैं, ऐसा ही जो भी मन में आता है श्लोक उल्लेख कर नहीं करते आचार्य का, वो हमें देखना चाहिए। हर बार जब भी श्लोक उल्लेख किया जाता है, मैं जब हम वर्णन कर रहे थे तब उसका सिमिलैरिटीज हमने वर्णन किया है पिछले कक्षा में, बहुत बार जो भी पिछले यू नो तात्पर्यों में। तो अभी अगला श्लोक ले, ध्यायतो विषयां पुंसा संगस्ते शोपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो मैंने उस समय कह रहा था, जैसे कूर्मा अपने इंद्रियों को अंदर समेट लेता है, नहीं किया तो क्या हो जाएगा? हमारा ध्यान आरंभ हो जाएगा। ध्याय तो विषय पुंसा, तो ध्याय तो विषय पुंसा संगास संजायते संगस्तेश बजायते, उससे आसक्ति हो जाते। संगात संजायते काम, संगात संजायते, उसके संग आसक्ति के कारण काम उत्पन्न हो जाता है। प्रभुपाद कभी कभी ऐसे भी कहा करते थे, असत संग करने से काम जागृत हो जाता है। असत संग करने से क्यों? असत संग करने से काम जागृत हो जाता है क्योंकि असत संग का अर्थ ही यही होता है कि वो लोग भौतिक भोग में रुचि रखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक अप्यसादो कृष्णा भक्त आहार। दो प्रकार के असत्संग होते हैं, जो स्त्री संगी होते हैं उनका संग करने से असत्संग होता है, तो क्योंकि वो स्त्रियों में ही भौतिकवादी लोग, ये स्त्री संगी मतलब भौतिकवादी, भौतिकवादी लोग सिर्फ स्त्रियों के संग में रहते हैं वो लोग, तो उनको संग करने से क्या हो जाता है? तो काम जागृत हो जाता है। और कृष्णा भक्त मतलब जो मायावादी वगैरह होते हैं, नास्तिक और मायावादी लोग होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसे विषयी लोगों को, भौतिकवादी लोगों का संग करना जो वैरागी है उसके लिए क्या है? विष पीने के समान है। किसी को बताया वो श्लोक? निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारंपरा जुगमिशोर भवसागर से संदर्शनाम विषयनाम अतयोषिताम च आहंत हंत विषभक्ष नप्यसादो। आहंत हंत अलास अलास कहते हैं, अहो क्या बोलते हैं हिंदी में, अहो अहो ऐसे ना। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अब इस भवसागर को पार करने का निश्चित किया है और भौतिक संपत्ति और सभी जो चीज़ें वस्तुओं से दूर है, निष्किंचन मतलब ऐसे चीज़ों से दूर रहता है, उसको उसमें कुछ नहीं रुचि नहीं लेता है, निष्किंचनस्य भगवत भजन में लगा है, भगवत भजनोन्मुखस्य पारंपरा जिगमिशूर भवसागर को पार करना चाहता है, तो संदर्शनाम विषय नाम अतयोषिताम छ, तो विषयी लोग है और स्त्री को मिलने से क्या होता है? उनको मिलने का संदर्शन दर्शन करने से क्या होता है? वो विषभक्षणप्यसाद, आहंत हंत विषभक्षणप्यसाद, विष भक्षण करने के समान है। तो क्यों विष भक्षण के समान है? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है उससे, भौतिकवादियों का संग करने से। तो असत्संग के बारे में भी वर्णन है, रूप गोस्वामी कुछ श्लोकों को उल्लेख करते हैं। आप जंगल में है और एक शेर आपको खाने के लिए आता है, नजदीक में ऐसे देवी देवताओं का क्या है मंदिर है, आप देवी देवताओं के मंदिर जाने से बजाय आप विष वो शेर के मुंह में प्रवेश कीजिए, ऐसे बोलते। क्या अर्थ होता है उसका? क्योंकि ये देवी देवताओं के मंदिर में सिर्फ भौतिकवादी लोग आते हैं, उनका संसर्ग होता है, वो भौतिक इच्छाओं को लेकर आते हैं ना भौतिकवादी देवी देवताओं के, ऐसे बोलते। या दूसरे शब्दों में आपको ऐसे भौतिकवादियों का संग करने का या भौतिक मंदिर में जाने का ऐसे अवसर है, या नहीं तो आपकी गिर्द सब जगह आग लगा है, अच्छा है कि उस आग में जल जाना भौतिकवादियों का संग करने से अच्छा। क्यों इतना जोर दिया गया इसके ऊपर? क्योंकि हम लोग एक बार मर जाते हैं शेर खाने से या आग लगने से, लेकिन भौतिक काम इच्छाओं को बढ़ाने से क्या हो जाता है, बार बार जन्म लेके बार बार मरना पड़ता है। इसलिए असत्संग बहुत खतरनाक है, वो भक्ति को नष्ट कर देता है ना। आजकल हमारे भक्त तो हमेशा असत्संग में ही रहते हैं ना, भौतिकवादी उनके स्त्री संगी उनके संग में ही रहते हैं। कॉलेज मतलब क्या है? वो असत्संग है बस। विषयी नाम अतः योषिताम च, विषयी लोग होते हैं योषित होते हैं, योषित मतलब स्त्री होती है, को एजुकेशन ब्रॉदल्स करियर, वुमन शुड हैव करियर, इक्वल राइट्स एंड करियर, वो सब क्या है, जगह है स्त्री पुरुषों को मिलने के लिए जगह है बस। संद हा हंत हंत बश, इसलिए आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है इसके कारण। संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध। तो इस श्लोक और अगले श्लोक में पतन कैसे होता है भगवान वर्णन कर रहे। इंद्रियों को हम लोग अंदर नहीं लेके भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो उसके ऊपर ध्यान, इंद्रिय विषयों के ऊपर ध्यान शुरू हो जाता है। आपने गुलाब जामुन देख लिया तो उसको खाने का आपका अनुभव है, उसके ऊपर ध्यान शुरू हो जाता है। मन में इच्छा भी है, इच्छाएं भी है, तो उससे आसक्ति हो जाता है खाने के लिए, फिर उसको ले लेते हैं। हम लोग नहीं पूरा करते हैं तो उससे क्रोध आ जाता है। तो इस तात्पर्य में बोल रहे कि कैसे प्रभुपाद इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या क्या कहा जाए। इस संसार के जंगल से निकलने के लिए, यहाँ पर जंगल जंजाल से निकलने के लिए एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे किंतु वह पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया। ये कुमार संभव नामक नाटक में आता है, कालिदास ने लिखा था इसको। वो सिर्फ 16 साल की थी, बहुत सुंदर स्त्री पार्वती देवी, तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। कुमार संभव टाइटल भी क्या है, कार्तिकेय का जन्म, वही अर्थ है उसका। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर के वो माया देवी अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खड़े रहे, जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक बताया जा चुका है। भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान के संगति के ध्यान आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है, अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख को रंच मात्र विचार से भी इंद्र तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। तो आजकल हम लोग बोलते हैं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है अन्य संस्थाओं में, आध्यात्मिक तथाकथित आध्यात्मिक संस्थाओं में, मायावादी संस्थाओं में, सब जगह लोग हैं बाहरी दौर से वो अपने आप को वैराग्य प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मुश्किल है। कृष्ण भावना भावित हुए बिना सर्वेंद्रिय विजय को प्राप्त करना मुश्किल है। प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक में बोल रहे थे, तो वो कहते हैं जब बहुत सारे उदाहरण दिया उन्होंने, कैसे कृष्ण भावना भावित हुए बिना ये मैथुन को त्याग नहीं कर सकते। तो वो उदाहरण देते, जब साबरमती में आश्रम था ना गांधी का, तो वो जब उनको जेल में डाला गया, उनके वापस आने के बाद वो देखते हैं कि सभी स्त्रियां सब गर्भवती है। तब तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह नहीं थे, सब स्त्रियां गर्भ वहाँ, मतलब उसका अर्थ क्या है, वहाँ के पुरुष स्त्री सब एक दूसरे में लगे हुए थे। तो ऐसा होता। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ये कुछ कुमारियों का संस्था है, हाउस ऑफ प्रोस्टिट्यूट बोल दिया उसका, उसी में। और ब्रह्मानंद प्रभु थे उसके साथ, है ना ब्रह्मानंद, ऐसे पूछते हैं। हाँ पाश्चात्य देश में वो नन और प्रिस्ट वो भी है ना, ऐसे प्रॉपर पूछते हैं। तो वो भी सब वही चलता है सब जगह, सिर्फ बाहर तौर से वो दिखता है। वो देखो, उनको देख कर ही आपको समझ में आएगा, उनके अंदर कुछ तेज नहीं है, कुछ नहीं है ना, सब इसी में लगे रहते हैं। सिर्फ कृष्ण भावना भावित होने से ही इससे मुक्त हो सकते। यहाँ पर यही बता रहा है ना, हरिदास ठाकुर का उदाहरण देते हुए, कृष्ण भावना भावित होने के कारण ही वो मुक्त उससे बच पाए। तो पंचम स्कंद में प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं, जो काम वासना से मुक्त होना चाहते हैं तो वो हरिदास ठाकुर से वो अनपराध युक्त अनपराध भाव से हरि नाम को जप करना चाहिए और हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करना चाहिए, तभी लोग ही काम वासना से मुक्त हो सकते हैं, ऐसे पंचम स्कंद में प्रभुपाद बोलते हैं। क्योंकि वो हरिदास ठाकुर इसके ऊपर पूरी तरह से विजय प्राप्त किया, दो बार, एक बार तो सिर्फ वेश्या आई, दूसरी बार माया देवी स्वयं एक सुंदरी की स्त्री के रूप में, फिर भी विचलित नहीं हुई हरिदास ठाकुर। ये मद्भक्ति प्रभाव है, मद्भक्ति प्रभाव है ना सर्वेंद्रिय विजय। तो अगला श्लोक, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति वंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न हो जाता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में सुना गिर जाता है, ऐसे पतन हो जाता है। ये लंबा स्थिति है पतन का, एक लंबा ये है, ये ध्यान करके 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 इंद्रिय विषय के ऊपर ऐसे वो उससे आसक्ति बढ़ जाती है, आसक्ति से काम बढ़ जाता है, भोग करने का प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो भोग करूँ करके तो वो नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फ्रस्ट्रेशन के कारण क्या हो जाता है, तो मोह बढ़ जाता है, मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाता है। स्मृति भ्रष्ट होने से क्या हो जाता है, उसको जो गुरु और शास्त्र से या वैष्णव से जो भी उपदेश प्राप्त करता है वो सब भूल जाता है, स्मृति भ्रष्ट होने के बाद में सब भूल जाता है ना, इसलिए वो पाप करने में लग जाता है, पतन हो जाता है। आप अजामिल का ऐसे ही हुआ, पहले उसने देखा, उसके ऊपर ध्यान करना शुरू कर दिया, उससे आसक्ति बढ़ गई, आसक्ति मोह बढ़ गया, तो मोह बढ़ने के कारण उसने जो भी कोशिश किया, हालांकि उपदेश को स्मरण करने के लिए शास्त्रों के, लेकिन फिर भी कुछ नहीं याद आया। तो जब आपको माया प्रवार आपके ऊपर आक्रमण करती है तब आपको बुद्धि से काम लेना पड़ता है, लेकिन बुद्धि नहीं है वो, शास्त्रों को सुने हुए बुद्धि, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, मुझे आश्रम छोड़ना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा, सभी ये जो आनंद है आश्रम का वो सब नष्ट हो जाएगा, वो सब जो बुद्धि होना चाहिए, तो वो बुद्धि नहीं है तो हम लोग नष्ट, हमारा पतन हो जाता है। तो ऐसे होता है। हम लोग यहीं पर रुकेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे उस तात्पर्य को भी आगे चर्चा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।